ओम शांति। आवाज यहां तक नहीं आई। ओम शांति। यहां के शुद्ध और शांत वातावरण में आकर के आप सब गहन शांति का, आनंद का अनुभव अवश्य कर रहे होंगे, राइट? मैं ठीक कह रहा हूं? क्योंकि ये वो परिसर है जहां सचमुच हम आते ही अनुभव करते हैं कि संसार से किसी अलग स्थान पर हम आ गए हैं। और ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है रिसर्चर्स को, क्योंकि जितना हम शांत वातावरण में रहते हैं, मन भी शांत होता है और पश्चात हमारे मन में नए नए और सुंदर नवीन विचारों की उत्पत्ति होती है। और यही कारण है कि प्रतिवर्ष स्पार्क विंग की तरफ से सर कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस सुंदर परिसर में किया जाता है। तो आप सब हमारे 13वें सर कॉन्फ्रेंस में यहां पधारे हुए हैं और आज उद्घाटन सत्र है, स्वागत सत्र है। तो इस स्वागत सत्र में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज शुक्रवार का दिन है तो मैं यही कहूंगा कि आप यहां पधारे हैं, ये हमारा और आपका दोनों का सौभाग्य है। आप यहां पधारे हैं, ये हमारा और आपका दोनों का सौभाग्य है। शुक्रिया करता हूं आपका। आज शुक्रवार है, दिल से आप सबका एक बार पुनः स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। सचमुच जब आध्यात्म और विज्ञान की बात आती है तो आज हम सबके लिए एक चिंतनीय विषय है जो विषय इस सर कॉन्फ्रेंस में रखा गया है। विज्ञान के चरम पर और शिखर पर हम सब पहुंच चुके हैं, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। कभी आकाश में उड़ना केवल एक कल्पना थी, जल में चलना एक कल्पना थी, या तेजी से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना कल्पना थी। दूसरे ग्रहों पर जाने की बात तो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता था, बैलगाड़ी में चला करता था। विज्ञान ने इन सब को बहुत ही सहज और सरल कर दिया है, लेकिन हम सब चिंतनशील और बुद्धिजीवी जो ईश्वर की संतान हैं, आज इस विषय पर भी अवश्य चिंतन करते हैं कि भले ही भौतिक संसाधनों से हम भरपूर हो गए हैं, लेकिन क्या वो मानसिक शांति और सुकून हमारे अंदर है? छोटी छोटी बातों में हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सुसाइड तक करने की बात सोचने लगते हैं। आज के समाचार पत्रों को आप उठा करके देख लें तो ऐसा लगता है कि हम शिक्षित तो कर रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या दीक्षित भी किया जा रहा है? विज्ञान शिक्षित करता है, अध्यात्म दीक्षित करता है। हम क्वालिफिकेशन तो दे रहे हैं बहुत अच्छे से अच्छे, लेकिन क्या हम क्वालिटीज भी डेवलप कर रहे हैं? विज्ञान क्वालिफिकेशन दे रहा है अच्छे से अच्छी, लेकिन क्या हम उनके अंदर, अपने बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज भी डेवलप कर पा रहे हैं जिसकी नितांत आवश्यकता है आज के दौर में? विज्ञान पढ़ना सिखा रहा है, आध्यात्म हमें गढ़ना सिखाता है। और यही एक चीज है, जब दोनों को हम सम्मुख रखते हैं तो लगता है कि इन दोनों के बीच हार्मनी की आवश्यकता नितांत आवश्यक है, जिसे सदियों से महसूस किया जाता रहा है। और आप सब रिसर्चर्स इस चीज को सत्य करेंगे, साबित करेंगे और साथ ही इस चीज को धरातल पर लेकर आएंगे, ऐसी कामना के साथ इस सर कॉन्फ्रेंस की यहां पे आवश्यकता महसूस हुई और इसकी यहां पे हम सुंदर रूप से परिचर्चा अगले 3-4 दिनों तक करेंगे। तो आप सबके अभिनंदन के साथ साथ आज के इस सुंदर विषय पर इस स्वागत सत्र में जो हमारे साथ मंच की शोभा बढ़ाने वाले हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा। आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय पंडित सुनील भराला जी, राजयोगी मृत्युंजय भाई जी और हम सब करतल ध्वनि से आज के जो हमारे अतिथि हैं उन सबका यहां मंच पर अभिनंदन करेंगे। पंडित सुनील भराला जी, राजयोगी मृत्युंजय भाई जी, आदरणीय अंबिका दीदी जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज के श्री राजकुमार ठुकराल जी, डॉक्टर शिव कुमार जी, भ्राता भूषण दीवान जी, डॉक्टर अलका अग्रवाल जी, ब्रह्मा कुमार, संजय भाई जी, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं और हम जोरदार करतल ध्वनि से आज के जो हमारे महानुभाव हैं उन सबका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, जिनके सुंदर विचारों से आज के स्वागत सत्र और आने वाले जो तीन चार दिन हम विचार मंथन करने जा रहे हैं उसके लिए सुंदर मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। मैं यही कहूंगा कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं आप चार चांद लगाते हैं, उस मंच की शोभा के क्या कहने, उस मंच की शोभा के क्या कहने जहां आप जैसे अतिथि आते हैं, जहां आप जैसे अतिथि आते हैं। जोरदार तालियों से एक बार पुनः हमारे मंचस्थ महानुभावों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारी एक सुंदर भारतीय परंपरा है, कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि किसी भी कार्य की सुखद शुरुआत हो तो कार्य आधा संपन्न हो ही जाता है, और किसी भी कार्य की सुखद और सुंदर शुरुआत ईश्वर की स्मृति से बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आइए आज के इस स्वागत सत्र की शुरुआत हम करते हैं 3 मिनट ईश्वरीय स्मृति से। हम सब ईश्वर को याद करेंगे और साथ ही इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करेंगे।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। अपना जहां सुंदर रचता अपना जहां, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
ईश्वर की स्मृति सचमुच मन को सुख और आनंद से भर देती है, एक आत्मविश्वास पैदा करती है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ रहे ईश्वर का सानिध्य सामीप्य हमें अवश्य सफलता प्रदान कराएगा। और इस परिसर में अगले 3-4 दिनों में आप इस अनुभूति को और गहनता से कर पाएंगे कि वो कहीं दूर नहीं लेकिन हम सबके बहुत नजदीक हैं, समीप हैं और हमारे साथी हैं। ईश्वर को हम साथी बना करके इस परिसर से जाएंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कौन कौन चाहेगा आप में से कि ईश्वर आपके जीवन में साथी बन जाए, जरा हाथ उठाएंगे। बहुत सुंदर। हम सबकी ये दिली कामना होती है कि वो परमात्मा जिसे रोज हम याद करते हैं, क्यों ना वो हमारे जीवन के इतने समीप आ जाए। और जैसे परमात्मा को हम समीप चाहते हैं अपने, वैसे मैं आप सबसे भी चाहूंगा कि आप दूर ना बैठे रहें, हमारे समीप आ जाएं। तो जो भी पीछे बैठे हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप सामने आए ताकि हम आपके दर्शन कर सकें और आप भी बड़े करीब से हमारे मंचस्थ महानुभावों को देख सकें और सुन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी ब्रह्मकुमारी बहनों से कि मंचस्थ हमारे अतिथियों का बैज और गुलदस्ते से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारी ब्रह्मकुमारी बहनें। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि अतिथि देवो भव कहती भारत की ये धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा। और इस परंपरा में हम तालियों से अपना योगदान अवश्य देंगे। ये पुष्प गुच्छ और बैज केवल मंचस्थ महानुभावों के लिए नहीं लेकिन आप सब के लिए भी है, आप सब भी इसमें शरीक हैं। तो हम तालियों के साथ अपने मंचस्थ महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। सचमुच हमारी एक ऐसी परंपरा है जो अपनत्व का अनुभव कराती है और ये अपनत्व हम सब भी दूर बैठे अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये पुष्प जो यहाँ दिए जा रहे हैं उसकी खुशबू आप तक भी अवश्य पहुंच रही है। ऐसे ही खुशबूदार पुष्प बनकर हम इस परिसर से जाएंगे। ये पुष्प गुच्छ आप सब के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत की श्रृंखला में मधुर वाणी ग्रुप से कि वे आए और हम सब का अपनी मधुर आवाज से अभिनंदन करें। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो ये ग्रुप है ये स्वयं गीत लिखता है, उसे कंपोज भी करता है और ये गाते भी स्वयं है। तो आप सबके लिए इन्होंने बहुत प्यार से गीत की रचना की है, उसकी धुन बनाई है और अब उस गीत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों से हम मधुर वाणी ग्रुप का अभिनंदन करेंगे जो हमारे अभिनंदन के लिए प्रस्तुत हुए हैं।
अनुसंधान कर तद्भावना निर्माण संतुलन समरसता होगी, होगा जन जन का कल्याण, होगा जन जन का कल्याण। आध्यात्मिकता अनुसंधान कर सद्भावना निर्माण, संतुलन समरसता होगी, होगा जन जन का कल्याण। आपका है स्वागत सम्मान। रे गर चका मगर मा पगर गसार थारे धनी रे गर चका मगर मा पगर गसार था। आध्यात्मिकता शक्ति है मन को शांति देती है, शोध अनुसंधान में जान ये जैसे भरती है, निर्माण बने निर्माण करे, निर्माण बने निर्माण करे और करे सबका आह्वान। संतुलन समरसता होगी, होगा जन जन का कल्याण, होगा जन जन का कल्याण। आध्यात्मिकता अनुसंधान कर सद्भावना निर्माण, संतुलन समरसता होगी, होगा जन जन का कल्याण। आपका है स्वागत सम्मान। जीवन प्रयोगशाला में हम योग का अभ्यास करें, संसार से संसार बदल परिवर्तित भूवाकाश करें, इतिहास लिखे परिवर्तन का, इतिहास लिखे परिवर्तन का। हम करें भारत उत्थान, संतुलन समरसता होगी, होगा जन जन का कल्याण, होगा जन जन का कल्याण। आध्यात्मिकता अनुसंधान कर सद्भावना निर्माण, संतुलन समरसता होगी, होगा जन जन का कल्याण। आपका है स्वागत सम्मान। रेशन रे घर सागा मगर माँ पगर कसार था, रेशन रे घर सागा मगर माँ पगर कसार था। पार्क के प्रकाश से जग में उजियारा होगा, अध्यात्म अनुसंधान से वही भारत फिर प्यारा होगा, था महान अपना भारत, महान अपना भारत फिर बनने वाला है महान। संतुलन समरसता होगी, होगा जन जन का कल्याण, होगा जन जन का कल्याण। आध्यात्मिकता अनुसंधान कर सद्भावना निर्माण, संतुलन समरसता होगी, होगा जन जन का कल्याण। आपका है स्वागत सम्मान, होगा जन जन का कल्याण। आपका है स्वागत सम्मान, होगा जन जन का कल्याण। आपका है स्वागत सम्मान, होगा जन जन का कल्याण, आपका स्वागत है सम्मान।
बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई, गोविंद भाई, विथिन भाई, हमारे तीनों ही इस कैंपस में समर्पित भाई हैं। पिछले 20-25 वर्षों से आप अपनी सेवाओं के साथ साथ इन कलाओं के माध्यम से भी सेवा करते हैं, और कितने सुंदर शब्द थे कि आध्यात्मिक अनुसंधान के माध्यम से ही भारत को पुनः हम विश्व गुरु बना सकते हैं। केवल बाह्य अनुसंधान नहीं, लेकिन आंतरिक अनुसंधान, आध्यात्मिक अनुसंधान, क्योंकि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो न केवल भौतिकता के विकास के साथ हम चरम पर पहुंचे, चांद को छुए, मंगल को छुए, लेकिन आध्यात्मिक अनुसंधान के साथ भी हम सारे विश्व को प्रकाश दें, ऐसी सुंदर रचना के साथ हमें प्रेरित करके गए मधुरवाणी ग्रुप के हमारे भाई, उनके लिए पुनः एक बार हम करतल ध्वनि से धन्यवाद अर्पित करते हैं। और स्वागत की इस कड़ी में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुदूर उड़ीसा राउरकेला से पधारी हुई हमारी दो बहनें देवश्री और अंकिता को, जो कि बहुत सुंदर गणेश स्तुति लेकर हमारी सम्मुख आई हैं। कल ही हमने गणेश जी को विसर्जित किया, लेकिन उनकी याद अब भी हमारे दिल में है, तो उनकी याद को पुनः ताजा करते हुए और साथ ही हम सबका अभिनंदन करने के लिए देवश्री और अंकिता हमारे बीच आ रहे हैं गणेश स्तुति वक्रतुंड महाकाय लेकर। कृपया जोरदार करतल ध्वनि से इन दोनों बहनों का स्वागत करेंगे।
प्रभा निर्विघ्नं
बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारी दोनों बहनों के द्वारा। आप दीदी के पास जाएं, दीदी आपको गुलदस्ता प्रदान कर रही है और हम सब तालियों से इनका धन्यवाद करेंगे जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है और हमें याद दिला दिया कि हम अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं। वो निर्विघ्न कैसे हो, न केवल गणेश जी की स्तुति लेकिन हम स्वयं भी ऐसी आध्यात्मिकता के पुंज बन जाएं जो हमारे जीवन में आने वाले जो अंधकार हैं, समस्या रूपी अंधकार हैं, वो दूर हो जाएं। ऐसी सुंदर प्रस्तुति देकर हमारी दोनों बहनें देवश्री और अंकिता बहन गई हैं और इन्होंने डेडिकेट किया अपने इस नृत्य को अपने गुरु श्रीमती सुजाता महापात्रा जी को। तो इनकी गुरु देवी के लिए भी हम एक बार करतल ध्वनि से उनका भी धन्यवाद अदा करेंगे जिन्होंने इतने अच्छे बच्चे तैयार किए और जो यहां आकर के अपनी प्रस्तुति हम सबके सम्मुख दे रहे हैं। इनके नृत्य ने हमारे भी मन मयूर को नचा दिया। लेकिन स्वागत की ये श्रृंखला यहां पूरी नहीं हो रही है। अब मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अलका दीदी को, जो कि स्पार्क विंग की महाराष्ट्र की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। कल्याण और संबंधित जो ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र हैं, वो आपकी देखरेख में बहुत ही कुशलतापूर्वक वहां के केंद्र संचालित हो रहे हैं। लाखों भाई बहने वहां पे राज्यों का अभ्यास करके अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। बाल्यकाल से ही आप विद्यालय से जुड़ी हुई हैं और पिछले 41 वर्षों से आप संपूर्ण रूप से समर्पित होकर मानवता की सेवा में लगी हुई हैं। तो हम अब आमंत्रित करते हैं स्वागत भाषण के लिए ब्रह्मा कुमारी अलका दीदी को।
ओम शांति। आज के इस सुंदर सद्भावनाओं की लेन देन करने के लिए जो आज हम सबके बीच में बहुत सुंदर मंच सजा हुआ है और हॉल भी आप सभी से सज चुका है, आज हम उस कार्य के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें यहां पर चार दिन हम अनेक वक्ताओं के द्वारा, अनेक महानुभावों के द्वारा बहुत सुंदर ज्ञान के चिंतन को ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ ही इस परिसर के अंदर जो आप सभी आए हैं तब से इस वातावरण का बहुत सुंदर अनुभव कर रहे होंगे। यहां पर आप सभी का स्वागत उस स्नेह के परमात्मा के प्यार के प्रकंपनों ने यहां पर कदम रखते हुए ही आपका किया है और आप सभी ने अनुभव भी किया है कि हम ऐसी इस धरती पर आए हैं जो ये धरा स्वर्ग से कोई कम नहीं है, जहां पर स्वर्ग की रचना स्वयं परमात्मा शिव जो इस विद्यालय को स्थापन कर करके हम सभी के अंदर उस ज्ञान के बीज को डालते हुए उस स्वर्णिम भारत को बनाने का कार्य इस स्थान से विश्व भर के लिए कर रहे हैं और ऐसे स्थान पर आप सभी पहुंचे हुए हैं, तो क्यों ना आप सभी का हम दिल से स्वागत करें। और ये स्वागत करने का भी सौभाग्य हमें मिला हुआ है, तो आज हम सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा जिसने आज ये सभी को एकत्रित किया है, उस परमात्मा का हम इस सभा में दिल से बहुत प्यार से और उस परमात्मा को जितनी जन्मों से हमने उसको ढूंढा था उतना ही दिल की आवाज से आज हम उसको अपने बीच में आमंत्रित करते हैं। हम सभी के बीच में उस परमात्मा का हम स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। उसके साथ आज इस मंच पर हम सभी के बीच में इस संस्था के हमारे राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारी के हैं, जो आज इस संस्था को बहुत ही सुंदर अपने अनुभवों के साथ बहुत वर्षों की तपस्या के और ज्ञान के गहराई में जाने के अनुभव के साथ एक एक के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के कार्य में लगे हुए हैं और वो सदा ही अपने प्लानिंग के द्वारा ऐसे प्लान बनाते हैं कि जिसमें अनेकानेक विश्व की महान विभूतियों को, वीवीआईपीओं को, महान बुद्धिमानों को यहाँ पर बुला करके उनसे इस ज्ञान की जो विशेष सारे विश्व को रोशनी पहुंचानी है वो कार्य में कार्यरत है। हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई, आज आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सबके बीच में पंडित सुनील बाहरला, जो हम सभी के बीच में बैठी हुई मूर्ति एक सादगी को लेकर के आई है, लेकिन उन सादगी के चेहरे में आज हम देखते हैं कि बहुत कुछ अनुभवों का भंडार उनके पास है जो हम सभी को देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी प्रेम से इस निमंत्रण को स्वीकार करके हम सबके बीच में आए हैं। भाई जी, आपका भी तहे दिल से आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सबके बीच में भ्राता भूषण भाई देवन, जो हम इंडियन आर्मी से जुड़े हुए हैं और आप इस मंच के अंदर अपने वो महान विचार अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति और विशेष साइंटिस्टों के प्रति, जो आज विश्व को जरूरत है ऐसे मार्गदर्शन को देने के लिए हम सबके बीच में पहुंचे हुए हैं और आप इस विद्यालय के बहुत स्नेही हैं, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सबके बीच में हमारी आदरणीय अंबिका दीदी जी विराजमान है, जो आज हम सभी देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद नवरात्रि आने वाली है और किसको न अंबिका नाम लेते ही देवी का चित्र सामने आता हो। हमारी अंबिका दीदी जी एक मातृ वात्सल्य को लेकर के बहुत ही सुंदर इस विश्वविद्यालय में हमारी जैसी कई बहनें हैं जिनको वो बहुत सुंदर पालना भी दे रहे हैं और विशेष स्पार्क के लिए जो हमारा स्पार्क विंग, जिसके वर्ष भर में काफी प्रोग्राम्स हमारी दीदी जी हम सभी को प्रेरणा देकर के चलाती रहती हैं। और दीदी का जो आज अनुभव के बोल आप सब सुनेंगे, चार दिन आप उनकी पालना का अनुभव करेंगे तो हम उनके अंदर के वो दिव्यता को निखारेंगे और उनके अंदर जो परमात्मा ने जो अपना प्यार और अपनी शक्ति भरी हुई है वो हम सभी को यहाँ पर अनुभव कराएंगे। आदरणीय दीदी जी, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सबके बीच में हमारे एमएलए साहब श्री राजकुमार भाई विराजमान है, तो हम जानते हैं कि जो एमएलए हैं उनके पास क्या न कारोबार चलती होंगी, कितने न टेंशन लेकर दुनिया आती है और वो सबकी सेवाओं में तत्पर रहते हैं और वो ऐसे इस राज्यों के अंदर अगर इंटरेस्ट रख रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है कि इनके द्वारा कईयों को उस राज्यों के द्वारा मिलने वाला फायदा जो उनके महान अनुभवों के बोलों के द्वारा वो अपने कर्म क्षेत्र पर देते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मंच पर हमारे आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार भाई जी विराजमान है, ये हापुर से आए हुए हैं और 50 वर्षों से इस संस्था से काफी अच्छी तरह से निगड़ित है और आज भी बहुत सुंदर अपने सद्भावनाओं के विचारों को अपने दिल में संजोए हुए इस मंच पर आज विराजमान हुए हैं, तो उनसे भी हम लाभान्वित होंगे। भाई जी आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है। और हम सबके बीच में हमारे संजय भाई जो इस पार्क विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और वो सभी आप सभी आने के पहले से ही आप सबके लिए स्वागत के लिए अपने कर्तव्य के द्वारा अपने मनसा के द्वारा बहुत समय से आपका आह्वान कर रहे थे और आप सभी को देखकर आज उनके मन में बहुत दिल हर्षा रहा है कि इतने सब पहुंच गए हैं और आप सभी का उनके तरफ से भी और परमात्मा के तरफ से भी हम आपका स्वागत करते हैं और संजय भी आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं कि आप अथक मेहनत करके बहुत दिल की सद्भावनाओं से आज सभी को आपने एकत्रित कराया है। इसके साथ साथ हमारे श्रीकांत भाई जी जो मंच पर नहीं बैठे लेकिन वो भी इस कार्य में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के, उन्हों की प्रेरणा से ये सब आज कार्यक्रम चार चांद लगा रहा हूं। हमारी दीदी जी श्रीकांत भाई जी और संजय भाई जी इन सब की आज इकट्ठी मेहनत जो देख रहे हैं हम जो आप हम सभी इकट्ठे हुए हैं आज हम सभी के बीच में हमारी मंच पर हम सब बहनों की सखी कहो या हमारी स्नेही बहन अलका अग्रवाल जी जो हम सबके बीच में बैठी हुई है और वो संस्था के कार्य में बहुत अपने स्नेह से संपर्क में रहती है, नजदीक रहती है और इन विचारों को वो अपने जीवन के अंदर लेते हुए इसको सम्मान से स्वीकार करती है। हमारी स्नेही बहन आपका भी बहुत बहुत इस मंच पर बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और अभी हम देखे कि सभी उन कन्याओं ने बहुत सुंदर अपने नृत्य के द्वारा भी आपका स्वागत किया, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मधुरवाणी ग्रुप का भी हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम सभी को मंच संचालन करके परमात्मा के तरफ बीच बीच में लेके जाने वाले हमारे रूपेश भाई आपका भी तहे दिल से आज मंच पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। रूपेश भाई को तो सब जानते ही होंगे, जब भी समाधान का प्रोग्राम देखते हैं सूरज भाई के साथ आपको देखते होंगे, तो ऐसी प्रतिभाओं की मूर्तियां जो आज मंच को सुशोभित कर रही है, इन सब के साथ आज इस सभा के अंदर जो आप सभी इस ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार करके पहुंचे हुए हैं और आप सभी में भी परमात्मा ने बहुत सारी अपने गुण विशेषताएं भरी हुई है, जो आज इस मंच पर चले हुए प्रोग्राम के साथ आप अपने विचारों की लेन देन करते हुए कुछ विचार अपने साथ आगे विश्व को सद्भावना देने के लिए, विश्व के परिवर्तन के कार्य के लिए आप यहां से लेकर के जाने के लिए आए हैं, आप सभी के इन शुभ संकल्पों का भी यहां तहे दिल से हम स्वागत करते, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने स्वागत के अंदर। थैंक यू। ओम शांति।
दिल को छू लेने वाले सुंदर शब्दों से हम सबका स्वागत करने वाली आदरणीय अलका दीदी का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सचमुच जीवन हम सबको बहुत कुछ सिखाता है, बाल्यकाल से लेकर अब तक हम बहुत कुछ सीखते आए हैं, लेकिन इस मंच से मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगले 3-4 दिन आप कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जो आपके पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर देने वाला है, आपके जीवन के लिए बहुत अनमोल धरोहर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन 3-4 दिनों को बहुत ही अटेंटिव होकर के आप ऐसे सारी सेशंस अटेंड करें ताकि जो भी रत्न इस मंच से आपको मिले वो रत्न आपके जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाते चलें। मन में ये जरूर आपके आया होगा जब आप वहां से चले होंगे तो, कि आखिर हम वहां जा रहे हैं, वहां जाकर के हम करेंगे क्या, होगा क्या, तो यहां आने का उद्देश्य क्या है, क्यों ब्रह्मा कुमारियों ने आपको यहां आमंत्रित किया है, क्यों स्पार्क विंग ने आपको बार बार पत्र भेज करके यहां आने के लिए प्रेरित किया है, को उद्देश्य क्या है, क्या हम यहां से लेकर के जाएंगे, आखिर इन 3-4 दिनों में हमें करना क्या है, ये बताने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं और साथ ही अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अंबिका दीदी जी को, जो कि स्पार्क विंग की चेयरपर्सन है और बैंगलोर सब जोन की निदेशिका है जिसके अंतर्गत 300 सेवा केंद्र हैं। दीदी के लिए मैं क्या कहूं, इनका बायोडाटा इतना लंबा है, इतने सारे गुणों की आप धनी हैं, बस मैं यही कहूंगा दीदी के लिए कि चंद्रमा की शीतलता इनमें, ममता की ये मूरत है, परमात्मा को प्रत्यक्ष करती इनकी तेजस्वी सूरत है। आदरणीय अंबिका दीदी जी,
ओम शांति। हमारे आदरणीय मंच और हम सबके आप आदरणीय भाई बहनों को मेरा नमन है। आज की जो विषय है को क्रिएटिंग हार्मनी थ्रू रिसर्चर्स एंड spirituality under the umbrella theme of God's power for golden age. आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने परमात्म शक्ति के आधार से golden age is nothing but an harmonious world with all the peace and prosperity, happiness. तो कैसे लाते हैं और इसके कनेक्शन में रिसर्चर्स को क्यों बुलाते हैं, आपके अंदर ये प्रश्न होगा, सोच होगा कि हमें क्यों बुलाया गया है। तो आज की दुनिया को देखते हुए एक सेकेंड में आप दुनिया को अपना सामने लाइए। विज्ञान ने सारी बहुत मटेरियल कंफर्ट देने के बावजूद राज्य सत्ता इतना मेहनत करते हुए सब कुछ मानवता को देने के बावजूद और धर्म सत्ता के इतने प्रयास के बावजूद भी समाज में, पर्सनल जीवन में, देश और सारी राष्ट्र को, दुनिया को देखा जाए तो सब तरफ डिसहार्मोनी के कारण मनुष्य इतने दुखी, इतना आतंक, इतना भय, इतना सारे अंदर पैनिक है, एम्प्टी है और वो सोच रहे हैं आगे क्या होगा। तो ऐसे समय पर दुनिया में हर लेवल पे, पर्सनल लेवल, कुटुंबिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, देश में, राष्ट्र में हार्मनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिसको लाने के लिए स्पिरिचुअलिटी, जो द फिफ्थ डायमेंशन एंड द नेग्लेक्टेड डायमेंशन ऑफ द सोसाइटी, हम सब सोचते हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली सब तरफ के डेवलपमेंट हम लाया जाए, सब रीति से हम हार्मोनी लाया जाए, लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन विच इज द बेस, द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ विच कैन ब्रिंग हार्मोनी इन ऑल द लेवल्स ऑफ द सोसाइटी, उसको या तो हम लोगों ने ना समझा है या तो एप्लीकेशन, द अप्लाइड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जिसकी रिजल्ट हार्मनी है, वो अनुभव करना हम भूल गए हैं या हम छोड़ दिया है। स्पेशली भारत में हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी वो 60-70 इयर्स के बाद जब हमारा सारा काम पूरा हो जाए फिर देखा जाएगा। ये भी हमारा सोच है या कईयों को डर है। स्पिरिचुअलिटी हमें पैसिव ना बना दे और सबसे हम अलग ना हो जाए, ये सारा डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस टू द रियलिटी, और टू से इट इज टू ब्रिंग ए बैलेंस एंड हार्मोनी इन लाइफ। तो जब ये बात हम समझते हैं तो गॉड्स पावर इन क्रिएटिंग ब्रिंगिंग हार्मोनी, व्हाट इज गॉड्स पावर एंड व्हाई वी नीड गॉड फॉर ऑल दीज थिंग्स। गॉड माना हम सिर्फ याद करने के लिए या मंत्र जपने के लिए भगवान नहीं है। भगवान इज ए सुप्रीम एनर्जी, सोर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड ऑल द पॉजिटिव पावर्स विच वी नीड फॉर हार्मोनी इन पर्सनल लाइफ, एंड देयर बाय वी कैन ब्रिंग हार्मोनी इन द सोसाइटी एंड इन नेशन एंड इन द वर्ल्ड। जिसको समझ के उसको करेक्ट अप्रोच देने के लिए हमको साइंस एंड रिसर्चर्स की बहुत 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 जरूरी है। गॉड्स पावर हम देख नहीं सकते आंकों से, बट व्हेन वी टैप हिज पावर्स विद इन द वैल्यूज द पावर्स व्हाट वी गेन दैट कैन बी मेजर्ड विथ यूर मिशंस। जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में स्पार्क द्वारा जो भी हम यहाँ रिसर्च का काम कर रहे हैं कॉन्शियसनेस पर या ब्रेन की अलग अलग रूपरेखाओं से जो कर रहे हैं, और हमारी जो मन बुद्धि का और हमारी जो वैल्यूज या पॉजिटिव थिंकिंग का जो असर है शरीर पर या संबंधों पर हमारे व्यवहार पर, इसका जो निजी रिजल्ट्स है इट इज ट्रेमेंडस। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज ए मस्ट एंड गॉड्स पावर इन एवरी स्टेप ऑफ अवर लाइफ टू हैव बैलेंस इनसाइड, टू हैव हार्मोनी इनसाइड बिटवीन माइंड एंड इंटेलेक्ट, माइंड एंड अ बॉडी एंड इन रिलेशनशिप। द डेफिनेटली द हार्मोनी कैन बी ब्रॉट विथ वैल्यूज। हमारे मंत्री महोदय है और भी बड़े हमारे सामने बैठे हैं, उनके साथ बहुत सारे भाई होंगे या ऑफिसर्स होंगे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी कलाएं हो सकते हैं बोलने के, कम्युनिकेशन के और भी अलग अलग तरीके से, लेकिन वो ट्रस्ट किसको करेंगे? हार्मोनी संबंधों में किसके प्रति किसके साथ होगा? अगर हम ये कहे इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द स्किल्स, इफ द हॉनेस्टी इज नॉट देयर, द ट्रूथ इनसाइड इज नॉट देयर, द ट्रस्ट विल नॉट बी देयर। द हार्मोनी इन द वर्क फील्ड वो हम कर नहीं पाएंगे, हमारी फेथ नहीं बैठ सकते है। तो संबंधों में जो भी समन्वयता चाहिए दैट कैन बी ब्रॉट विद वैल्यूज। तो जिस कारण जो स्पिरिचुअलिटी और उसके साथ साथ रिसर्चर्स को ये कार्य को आगे ले जाना होगा, और मानवता जो इतने आतंक इतने भय के कारण इतने दुखी है, दुखों के कारण रोगी है, इन सब से इन दुखों से छुड़ाने का जो कार्य है हम और आप सब मिलके करें। इसी उद्देश्य से आप सब साइंटिस्ट को रिसर्चर्स को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्पार्क विंग ने आप सबको यहाँ बुलाया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस बात को लेकर के हमारे जो भी भाई है सारे सृष्टि की हमारे बहने हैं इन सबको सुख शांति का प्रदान करें। ऐसे कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने उस महत्व को स्पष्ट किया कि जब कभी हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के डॉलर्स की बात होती है, जब कभी हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसके द्वारा दूसरे देशों पर किए गए आधिपत्य की बात होती है। जब कभी हम इटली की बात करते हैं तो हम इटली के वास्तुकला वास्तुशिल्प की बात करते हैं, लेकिन जब कभी भारत की बात होती है तो भारत जाना ही जाता है अपने आध्यात्म के लिए, अपने धर्म के लिए। उस आध्यात्म को जो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हल्का होता जा रहा है या छूटता जा रहा है, उसे पुनर्जीवित कैसे करें, यही उद्देश्य दीदी ने हम सबके सम्मुख रखा है, आप सबको यहां आमंत्रित करने का। क्योंकि जब कभी भी विदेशियों की भी बात आती है तो विदेशी भारत की ओर इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ही देखते हैं। हमारे यहां रशिया की एक बहन जो विद्यालय से जुड़ी हुई है, वो अपना अनुभव शेयर करती हैं कि मुझे परमात्मा की तलाश थी, सत्य की तलाश थी, और जब कभी भी मैंने अपने देश में पूछा कि ये सत्य, ये परमात्मा मुझे कहां मिलेंगे, तो हर बार मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हें भारत में भगवान मिलेंगे, भारत में सत्य ज्ञान मिलेगा। और वो बारंबार यहां आई और अंततः उसकी तलाश इस पवित्र परिसर में जहां आप आए हुए हैं वहां आकर के संपन्न हुई। तो हम भी उस सत्य की ओर बढ़ें, उस ईश्वर की ओर बढ़ें, यही वास्तव में इस कॉन्फ्रेंस का ध्येय है और अवश्य ही इसे आप पूर्ण करेंगे। आज के सुंदर विषय पर अब अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी मुख्य अतिथि ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेबर वेलफेयर काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ लेबर यूपी गवर्नमेंट और केवीआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर आदरणीय भ्राता पंडित सुनील भराला जी का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय भराला जी का हम अभिनंदन करेंगे। इनके लिए यही कहूंगा कि ईश्वर ने अनमोल रत्न गिनती के बनाए हैं, उनमें से एक विशेष रत्न भराला जी के रूप में आज हमारे बीच आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें।
आज माउंट आबू के स्थित ब्रह्म कुमारी प्रजापिता के नाम से देश में नहीं पूरी दुनिया में इस विश्वविद्यालय के सभागार में हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष के रूप में राजयोगी माननीय श्री बीके मृत्युम जी, हमारे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पूरे भारत और दुनिया में पहचान देने वाली दीदी के रूप में राजयोगी दीदी जी, साथ में बीआर वो जो मुंबई से अभी आए, अभी परिचय हुआ, ऐसे आदरणीय भूषण जी दीवान जी विशेष अतिथि के रूप में हमारे उत्तराखंड से और वहां के बहुत जुझारू नेता के रूप में, वहां से विधायक रुद्रपुर से ऐसे आदरणीय राजकुमार जी ठुकराल जी, हमारी दीदी दूसरी डॉक्टर अलका अग्रवाल जी, हमारे भाई बैठे हुए जो रुद्रपुर से ही हैं, ऐसे विशेष अतिथि के रूप में आज ही इस प्रांगण में परिचय हुआ। इस मंच पर आदरणीय श्री शिव कुमार जी, आदरणीय श्री संजय जी जो इस कार्यक्रम का संचालन और देखरेख कर रहे हैं, ऐसे दीदी हमारी बीके दीदी अलका जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए हमारे बहुत पूरे देश के ऐसे बड़े चर्चित जो उड़ीसा से लगातार 9 बार सदन के सदस्य रहे, लोकसभा के मेंबर रहे, ऐसे हमारे आदरणीय सांसद जी, और यहां जिनके कारण से मुझे आने का गौरव और सम्मान प्राप्त हुआ, हमारे मेरठ जनपद से ही जहां अपना पूरा समर्पण जीवन देकर के यहां पर काम पूर्णकालिक के रूप में कर रही ऐसी दीदी हमारी सूरजमुखी जी, छोटी बहन उनकी ममता जी, यहां सामने बैठे हुए इस सभागार के अंदर जो इस पवित्र स्थान से अपने मन और तन और कर्म से जुड़े हुए, ऐसे हमारे सामने बैठी मातृशक्ति के रूप में, सामने बैठे ऐसे सभी योग पुरुष के रूप में, मेरे यहां बुजुर्गों, मीडिया और पत्रकार बंधुओं और यहां सुरक्षा के बंधुओं, बहुत लंबे समय से इस स्थान का नाम पूरे देश में अन्य अन्य जगहों में जब जाते थे तो सुनने को मिलता था, बहुत प्रशंसा लोग करते थे और अंदर से मन के अंदर एक कामना होती थी कि कभी हमें भी जाने का अवसर ऐसा मिलेगा जो वहां पर इस देव भूमि पर और ऐसे अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर जहां ये पवित्र स्थल निर्माण और निर्माता के रूप में, परम पिता के रूप में जिन्होंने इस संस्था का गठन करके 1936 में देश और दुनिया के अंदर बहुत लोगों को जो मन से कर्म से ताकत दी, मैं ऐसे श्रद्धे उनको नमन करता हूं जो सबके शीर्ष के रूप में दिखाई देते हैं, मैं उनको नमन करता हूं जिन्होंने ये संस्था का गठन एक कल्पना उस समय की होगी कि जब सोचने के लिए भी मजबूर हो सकते थे कि आज ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन को जीने की राह सिखाने वाली ये संस्था, ऐसे योग पुरुष आज जब आए तो इस प्रांगण के अंदर प्रातः से, क्योंकि राजनीतिक जीवन में काम करने वाले कोई भी कार्यकर्ता हो, उसमें हम हो या कोई और हो, उस भागदौड़ जीवन में कभी समय ये नहीं मिलता जानने का, पहचानने का, लेकिन जब प्रातः के समय राजधानी से उतर करके यहां की तरफ चले तो मन और दिल यहां की तरफ समाया और तभी से सवाल पर सवाल खड़े हुए। जब इस प्रांगण के अंदर आए, प्रांगण के अंदर देखा शिष्टाचार, इस प्रांगण के अंदर देखा अनुशासन, और अनुशासन के साथ चेहरे पे तेज, योगा की क्षमता और काम करने की अपार ऊर्जा के साथ जब उस भोजनालय से लेकर के और प्रांगण के अन्य जगहों पर जहां गाइड करने वाले जो बता रहे थे और उनको हम जानने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश करते करते जब ये जानना चाहा कि ये संस्था का स्वरूप किसने इसकी कल्पना की थी, कब की थी, और फिर उसके आगे जो सवाल खड़ा हुआ, जो मन में जिज्ञासा थी पूछने की, तो गाइड से पूछा कि ये संस्था अब कहां तक काम करती है, तो गाइड ने जब बताया कि देश और दुनिया के अंदर 9000 संस्था आज खड़ी हुई है और देश दुनिया में काम कर रही है, और वो संस्था इसलिए काम कर रही है कि जो परमात्मा का, ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर और इस शरीर की जो बीमारी जो अंदर उत्पन्न होती है, और जहां डॉक्टर भी फेल हो जाता है और उस डॉक्टर की दवाइयों से उसको आराम ना लगे, लेकिन यह ब्रह्म कुमारी इस विश्वविद्यालय के जो द्वारा जो संस्थाएं काम करती हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे योगा के रूप में हो, अभ्यास हो, शिष्टाचार दिनचर्या हो, उससे स्वतः ही आदमी के मन और कर्म और दिनचर्या से स्वच्छता और ठीक और स्वस्थ होने की कामना होती है। मैं इस संस्था को इसलिए बहुत बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उस आत्मा को जिन्होंने ये कल्पना की थी, जिन्होंने ये सोचा था कि ऐसा काम करेंगे। और जब आगे फिर पूछने की और जिज्ञासा बनी तो उसमें ध्यान में आई कि संस्था कैसे चलती है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए बहुत सारे धन राशि की आवश्यकता, वो कहां से आती है। तो गाइड ने जब ये बताया कि उसका हिस्सा अपने गहरी कमाई का, ईमानदारी के जीवन जीने वाले व्यक्तियों का, उसके एक रुपए के सहयोग राशि से ये परम बड़ी संस्था चलती है, तो और भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस किया। साथ में ये भी एक प्रेरणा मिली यहां आने के बाद कि संस्था को और संगठन को चलाने का अगर और भी प्रेरणा लेनी है, अच्छी प्रेरणा लेनी है, तो यहां माउंट आबू पे आकर के ब्रह्म कुमारी इस के काम करने वाले जो संगठन के जो कार्यकर्ता और वॉलेंटियर्स हैं, तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। संस्था बहुत चलाते हैं, संस्था के पीछे क्या क्या सोच हो सकती है, लेकिन इस संस्था के जो कार्य और संस्था के जो काम काज की यहां पर देखने से जो मिली है, तो उससे एक नई प्रेरणा और एक विचार का भी अंदर से उत्तेजित होकर के खड़ा होता है। और मैं अभी कई लोगों से जब टेलीफोन पे वार्ता हो रही थी, जो लोग समाज जीवन के अंदर आकर के, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आकर के, या फिर अपने व्यापार क्षेत्र के अंदर आकर के, या दूसरा तीसरा जो पक्ष है जिसको हम अफसरशाही ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, जब उनको देखते हैं और काम करने की जो प्रेरणा होती है, यानी कि मानदेय, सैलरी और आदि आदि धनराशि लेकर के भी इतनी निष्ठा नहीं हो सकती जितनी निष्ठा यहां के उन वॉलंटियर्स में और कार्यकर्ताओं में है, जो निशुल्क अपना त्याग और तपस्या करके काम करते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं इस बात, ये बधाई देने के पात्र के साथ प्रेरणा के स्रोत भी हैं। प्रेरणा लेनी चाहिए जब सरकारी काम काज को, क्योंकि हमें कभी अवसर नहीं मिला था। हमें अवसर मिला तो संगठन में काम करने का, बाल अवस्था से संगठन में काम करते थे, संघ के स्वयंसेवक के रूप में आए, फिर अपने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का काम शुरू किया। लेकिन जब सरकार में काम करने का अवसर मिला तो उससे हमें बहुत सारा ज्ञान और मिला। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं इस बात को कि जो इस ब्रह्म कुमारीज के संस्था के द्वारा निर्माण और निर्मित कार्यकर्ताओं से जो प्रेरणा है, मैं अपने ऑफिसर से कहूंगा जाकर के, अगर काम सरकारी के रूप में करते हो और जब तनख्वाह लेकर के काम करते हो, लेकिन निष्ठा नहीं आती उस काम के प्रति, निष्ठा आनी चाहिए। अगर निष्ठा अंदर नहीं आ रही है तो ब्रह्म कुमारी के कार्यकर्ता और वॉलंटियर से प्रेरणा लेकर के आओ, काम करने की अपने आप निष्ठा आ जाएगी और अपने आप उस बात की सद्बुद्धि और ज्ञान आ जाएगी कि उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कि ये सिखाने की जरूरत यहां से है, सीखने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं समय की व्यस्तता के कारण से मैं कल्पना नहीं कर पाया था, लेकिन यहां आने के बाद मैंने जब देखा और साक्षात्कार दर्शन हुए, सब अधिष्ठान से लेकर के प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं के, अधिकारी गणों के, तो अंदर से जिज्ञासा हुई कि मुझे वास्तव में एक दो दिन का समय रखना चाहिए था और बहुत सारा सीखने का मुझे अवसर प्राप्त होता। हां, लेकिन आज समय की मेरे साथ बहुत बाध्यता हुई, परंतु ये भी मैंने निर्णय किया कि मैं इस संस्था से हमेशा के रूप में प्रेरणा लेने के रूप में मैं आता रहूंगा और आगे अपने समय को निकाल करके इस संस्था पर आने का अवसर हमेशा प्राप्त करूंगा। मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए, मैं अपने मन से अपने क्रम से आना चाहूंगा। मैं इन आयोजकों को जिन्होंने मुझे यहां आने का अवसर दिया, जिनके सफल प्रयास से मैं यहां आया, मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि मेरा जीवन छोटी सी उम्र से ही झुग्गी झोपड़ी बस्ती मलिन में रहने वाले परिवार, श्रम का काम करने वाले श्रमिक लोग, मेरा जीवन उसी में पूरा बीत रहा है और छोटी सी अवस्था से ही उन्हीं के बीच में काम करता रहा हूं। क्योंकि गरीबों को देख करके, क्योंकि आज जब सोचता था कि उनके बारे में सोचता रहता था और उनके बीच में काम करने की मेरी अपनी इच्छा शक्ति जागृत रहती थी, वही काम सरकार ने मुझे दिया श्रमिकों के बीच में, श्रमिकों की सेवा के लिए मेरा समय उसी में बीतता है, परंतु उनका समय निकाल करके इस संस्था को भी समय देने का प्रयास करूंगा। आयोजकों को पुनः फिर बधाई देते हुए और सम्मानित मंच को भी इस बात का मैं बधाई देते हुए और सामने बैठे हुए जो ऐसे तपस्वी लोग अपना काम छोड़ करके अपने त्याग से यहां पर, मैं इन सबको अपनी तरफ से सादर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया पंडित सुनील भराला जी, आपने अपने मन के उद्गार हम सबके सम्मुख रखे। बहुत सुंदर प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं और हम सबके सम्मुख भी एक अनुभव युक्त बात रख दी है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता आप कह रहे हैं, हम इसे परिवार कहते हैं, ये ईश्वर का परिवार है। और यहाँ जो भी आप श्वेत वस्त्र में लिपटे हुए भाई और बहन देखते हैं, वास्तव में ईश्वर के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। और जो थीम दीदी आपको बता रही थी, गॉड्स पावर फॉर गोल्डन एज, स्वर्णिम संसार के निर्माण के लिए सभी अपने तन मन धन से समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। देखिए समर्पणता कहाँ आती है, जहां अपनत्व होता है। भारत भूमि हमारी भूमि है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमेशा से ही हमारे जेहन में रही है, हमारी संस्कृति संस्कार में रही है। इसी भावना को लेकर के यहाँ के भाई बहन कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि उस बीच तक पहुंचने की अवश्य कोशिश कीजिएगा कि आखिर प्रेरणा का स्रोत क्या है। यदि वो स्रोत हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन भी वैसे ही प्रेरणा स्रोत अन्य के लिए बनेगा, क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत है मित्रों कलयुग रूपी, जिसे हम सबकी एक एक उंगली की आवश्यकता है। केवल कुछ भाई बहनों की नहीं, लेकिन आप सबकी भी आवश्यकता। यहां यहां बैठे हुए यदि एक एक भाई बहन ये संकल्प ले ले कि मुझे भी अपने जीवन को मूल्यों से सजाना है, औरों को प्रेरित करना है, एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण की ओर बढ़ना है, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम सारे संसार को स्वर्णिम संसार बना पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस कार्य में हम सबको भी अपना योगदान देना चाहिए? कौन कौन ऐसा कहते हैं कि हाँ इस कार्य में हम भी अपना योगदान देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। यही वास्तव में हमारी सबसे बड़ी एक प्रेरणा कहें या योगदान कहें वो होगा। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं हमारी विशेष अतिथि जो हमारे बीच पधारे हुए हैं, भ्राता भूषण दीवान जी की ओर, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर रहे हैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के। आप फॉर्मर कमांडर रहे हैं इंडियन नेवी के और वर्तमान समय आप एडवाइजर हैं नेशनल आउटरीच एक्सीलेंस के। तो मैं आमंत्रित करता हूं भ्राता भूषण दीवान जी को, हम जोरदार करतल ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वो आज के सुंदर विषय पर अपने विचार रखें।
मंचासीन महानुभाव, सभा के सभी उपस्थित सभागण, मैं आपसे अपने विचार इच्छा शक्ति और इच्छा पूर्ति इस पे रखना चाहता हूं। हम सब यहां बैठे हैं, हम सब मेरा ख्याल है इच्छा के पुंज हैं। हर मिनट हर पल हमारे मन में संकल्प उठते रहते हैं, इच्छाएं उठती रहती हैं। सवाल ये है कि कौन सी वास्तविक सच्ची इच्छा है, कौन सी बुलबुले की तरह क्षणभंगुर इच्छा है, कौन सी आत्मा से निकल रही है, कौन सी स्थूल शरीर से इंद्रियों से निकल रही है। आप सबने सुना होगा Y2K। Y2K क्या है? 1st January 2000। यह उदाहरण मैं पहले भी मैंने दिया था। 1st January 2000 क्या था? सदी का पहला दिन। कौन सी सदी? 21वीं सदी। और 1st January 2000 क्या था? सहस्त्राब्दी मिलेनियम। 2000 साल पूरे हो गए और थर्ड मिलेनियम, तीसरी सहस्त्राब्दी का पहला दिन। तो शोध बताता है कि कई वृद्ध लोगों ने, कई रुग्ण लोगों ने, अति रुग्ण लोगों ने ये मन में ठान लिया कि नहीं, मैं मरूंगा तो थर्ड मिलेनियम देख के मरूंगा। 3000 साल की शुरुआत हो रही है, सहस्त्राब्दी शुरू हो रही है, 1st January 2000 के बाद मरूंगा। और शोध बताता है कई लोग ज्यादा जी गए, मृत्यु की दर 1999 में कम रही और 2000 में फिर वो बढ़ी। क्या मतलब? इच्छा हमारी कितनी प्रबल है उसी पे काफी निर्भर होता है कि हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसमें सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या आ जाता है? प्रॉब्लम ये आ जाता है कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो ये विवेक रखना कि सच्ची इच्छा आत्म मन से आ रही है या ऊपरी सतह से आ रही है, ये अपने को मालूम नहीं पड़ता है। और जब ये मालूम नहीं पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दूसरे प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं। क्या सोचने लगते हैं कि बहुत पैसा मिल जाए तो परम सुख मिल जाएगा, बहुत मान सम्मान मिल जाए तो परम सुख मिल जाएगा, और अपने आप को नए प्रोजेक्ट में, नया प्रोजेक्ट, बड़ी गाड़ी, बड़ी पोजीशन। और हम सब कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। अब मैं कॉरपोरेट में टाटा में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, हम बात करते हैं अपने जूनियर से, सीनियर से, सभी को पता है मेरा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पे हम चल रहे हैं। पर क्या होता है, हम देख रहे हैं वो उद्देश्य क्या है, सच्चा वास्तविक उद्देश्य क्या है वो समझ नहीं पाते हम। तो मैं ये समझता हूं उसको समझने के लिए भी ये जो बुलबुले की तरह संकल्प निकल रहे हैं हमारे दिमाग में प्रति क्षण, सैकड़ों, बीसों, हजारों संकल्प निकल रहे हैं, उन पे अगर हम नियंत्रण पाएं, अगर हम उन पे नियंत्रण पाएं तो हम विवेक कर पाएंगे कि सच्ची इच्छा क्या है मेरी और भ्रमित करने वाली बुलबुला क्या है मेरा। तो मैं समझता हूं ये स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है ये हमें इस पे कंट्रोल पाने को, विवेक पाने को रास्ता दिखाता है। तो क्या हो जाता है कि हम जो समझते हैं उद्देश्य है वो मृग तृष्णा है, भ्रम है। तो ना तो हमें सफलता मिलती है पूरी, ना खुशी मिलती है पूरी, और उस खोखलेपन में, असंपूर्णता में, अधूरेपन में पूरा हम जीवन बिता देते हैं। मेरा ख्याल है ये नरक है, ये नरक है। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ये है कि आपका अंतःकरण का और बाहर का सरल भाव है। जो यहां पे आप कार्यकर्ता हैं कर रहे हैं, जैसे भराला साहब ने बताया, आप देखें तो उनमें शक्ति भी है काम करने की, सेवा कर्म ब्रह्म कुमार में समर्पित हैं, तेज भी है। तो ये अंदर और बाहर का आत्म इंटीग्रेशन हार्मनी। और आप देखें स्वर्गीय परमात्मा तुल्य लेखराज जी या बड़े बड़े साइंटिस्ट या बड़े बड़े महान नेता आप दिखता है आपको सामने कि कैसा उनके समन्वय है, कैसा हार्मनी है। तो मैं ये चाहता मैं समझता हूं इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग आए हैं अगले चार दिन। शिव बाबा हमें शक्ति दें, हमें विवेक दें। हम यहां ज्ञान सरोवर में आए हैं, ज्ञान की गंगा में आए हैं, ज्ञान पुंज में आए हैं। और इस प्रोजेक्ट को कि मैं अपने आप को जानूं, मेरी सच्ची इच्छा क्या है, मैं कौन हूं, क्या चीज मुझे परम सुख देगा, चिर सुख देने वाला, चिरंतर सुख देने वाला। तो ये मौका ये चार दिन हमें मिला है, ये तरीका क्या तरीका है अंदर जाने का, गोता लगाने का, समझने का अपने आप को। अगर मैं विवेक ताकि मैं इस विवेक को पा सकूं, इस प्रोजेक्ट को मैं सफल कर सकूं कि मैं क्या चाह रहा हूं वास्तव में। तो ये अगर हम करें, प्रभु हमें शक्ति दे और हम पुरुषार्थ करें और अपने अगले चार दिन यहां से कुछ लेके जाएं। धन्यवाद।
जीवन के सुंदर सत्य जिसकी कभी न कभी कहीं न कहीं हमारे मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में वो उठते ही हैं कि मैं आखिर इस संसार में क्यों हूं, कहां से आया हूं, मेरा इस संसार में होने का उद्देश्य क्या है, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाऊंगा। ये सचमुच ऐसे क्या कहूं मैं शाश्वत प्रश्न है जो सदैव से हमारे मन में रहे हैं। और जैसे आदरणीय ब्राता जी ने बताया कि हमारे पास तीन चार दिनों का इतना सुंदर अवसर है जबकि हम इस ज्ञान सरोवर में इस गहराई में उतरकर अपने अंदर उतरकर इन सत्य बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो सचमुच जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो जाएगी। और जिस इच्छा की बात आप कर रहे थे उस सत्य इच्छा को भी हम पहचान पाएंगे कि वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। विवेकानंद जी ने भी कभी कहा था कि यदि हम और पशु पक्षी दोनों ही एक प्रकार का जीवन जिए, वो भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, दो चार बच्चे होते हैं, काल कल्वित हो जाते हैं, हम भी पैदा हुए हैं, बड़े होते हैं, दो चार बच्चे हुए, काल कल्वित हो गए, हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाता है। कुछ तो अंतर होना चाहिए, वो अंतर क्या है, उस चीज को समझने का सुंदर अवसर हमें इस परिसर में प्राप्त होगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री राजकुमार ठुकराल जी को जो कि हमारे बीच उत्तराखंड से पधारे हुए हैं। आप विधायक महोदय हैं, उत्तराखंड की जो सरकार है उस सरकार में भी आपकी अहम भूमिका रहती है, वहां के लोगों के आप लोकप्रिय नेता हैं, जन नेता हैं, और वहां की जो सेवाएं हैं, समाज की सेवाएं हैं, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आमंत्रित करता हूं श्री राजकुमार ठुकराल जी को।
ओम शांति। माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान सरोवर के महामंथन में, पांच दिवसीय महामंथन में बतौर मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हमारे अग्रज भाई सुनील भराड़ा जी, आज के समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर उद्योगपति और मुझ जैसे कई योद्धाओं को तैयार करने वाले मेरे पिता के समान डॉक्टर शिव कुमार अग्रवाल जी, हम मेरे पूजनीय आदरणीय बीके मृत्युंजय जी, बीके अंबिका जी, बीके अलका जी, अभी जिनको आपने सुना भारत की आर्मी में अपनी सेवाएं देने वाले श्री भूषण दीवान जी, डॉक्टर अलका अग्रवाल जी, बीके संजय जी, इस समारोह का सुंदर संचालन करने वाले भाई रूपेश जी, और हमारे मध्य में एक विद्वान व्यक्ति यहां पर मौजूद है जो चार बार उड़ीसा में विधायक रहे हैं और पांच बार पार्लियामेंट में हमारा नेतृत्व किया है, ऐसे महान योगी डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाठसानी जी, मैं चाहता हूं अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, एक परिचय हो जाए हमारे बुजुर्ग का। श्री पाठसानी जी, 45 साल तक नेतृत्व किया आपने, एक महान विभूति यहां पर और मौजूद हैं, जो दिल्ली में रहकर ब्रह्मा कुमारी का काम भी करते हैं, डॉक्टर अनिल जैन साहब हमारे अग्रज हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और जिस बहन ने मुझे रक्षा सूत्र बांधकर, अभी रक्षाबंधन पर मैं गया था रुद्रपुर में ब्रह्मा कुमारी अपने सेंटर पर, तो वो बहन अपनी विचारधारा के माध्यम से आम जनमानस को ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सरोवर की ओर आकर्षित करती हैं। रक्षा सूत्र में मुझे बांधने वाली बीके सूर्यमुखी जी और मेरठ से यहां पर पहुंची बीके ममता जी और उपस्थित इस महान ज्ञान सरोवर में यहां पर पहुंचे सभी आगंतुक बंधुगण, तपस्वी श्रोतागण, आप सभी की सामूहिक सहभागिता से यह सुंदर कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है। आम जनमानस के मानसिक पटल पर अपना गहरा प्रभाव किस प्रकार से छोड़ा जाए, यह मुझे मात्र रुद्रपुर के उस सेंटर में जाने पर ज्ञात हुआ। मैं जीवन में पहली बार आज यहां पर आया हूं। आज प्रातः 6:30 बजे हम लोग यहां पर उतरे तो जैसा जैसा सुना था उससे बढ़ के मिला। देखिए, मैं राधा स्वामी हूं, मैं व्यास को मानता हूं, मैंने अपने गुरु का नामदान लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं उससे भी बढ़कर, आज जब मैं सुबह नाश्ते में गया तो किस प्रकार से आदर सत्कार क्या होता है वो मुझे यहां पर देखने को मिला। जो मैं कई संस्थानों में गया हूं, मुझे आज तक इस प्रकार का आदर सत्कार देखने को कहीं नहीं मिला। आप राजनीतिक क्षेत्र में एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, आपके प्रभाव का बहुत असर है, हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर बिना पद वाले को भी, अमीर हो गरीब हो, साधारण व्यक्ति भी हो, उसको भी उसी प्रकार का सम्मान है जैसा वीवीआईपी को भी। आत्मा अपने पिता परमात्मा को सच्चे दिल से याद करे, यही योग साधना है और यही इस विचार गोष्ठी का, इस 5 दिन के महामंथन का सार भी है। कोई व्यक्ति अपनी माता के पेट से सीख कर नहीं आता। यह समाज एक प्राइमरी पाठशाला है जो हमारे गुण और दोष के आधार पर हमारा मूल्यांकन करता है। समाज किस प्रकार का टेस्ट चाहता है, मैं आज एमएलए हूं, जनता मुझसे क्या चाहती है, मैं उसी अनुरूप कार्य करूं, नहीं तो मैं समाज विरोधी कहलाऊंगा। और ठीक उसी प्रकार से आज ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान सरोवर से, माउंट आबू से जो विचारधारा पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है, वो वास्तव में आम जनमानस के मानसिक पटल पर आघात करके, उस पर चोट करके, उसको भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पर लाए, तभी आज के कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होती है। और हम सबको मिलकर इस महान यज्ञ में अपनी आहुति देनी है और किस प्रकार से इस अंधकार के समाज को प्रकाश पुंज के रूप में हम लोग स्थापित करें। जितनी बहनें हैं सबके पास ज्ञान का अपार भंडार है। यहां पर भी बहुत सारे तपस्वी मंच पर बैठे हैं जिनके पास अपने ज्ञान का अपार भंडार है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से वो ज्ञान का अपार भंडार निश्चित रूप से इस समाज को लाभान्वित कर सकता है। यह समाज और सुदृढ़ हो सकता है। इस ज्ञान के अपार भंडार की कुछ किरणें आम जनमानस के मानसिक पटल पर पहुंचे और वो व्यक्ति परिवर्तित हो, निश्चित रूप से इस काम का लाभ मिलेगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके फर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके फर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये खामोश रहकर, शांत रहकर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने वाली हमारी बहनें वास्तव में इस योग साधना को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। गहरे अनुभवों का आधार है ज्ञान। अपने गहरे अनुभवों के आधार पर इस ज्ञान को और विकसित करने की आवश्यकता है। कैसे आम जनमानस को प्रभावित किया जाए, मुझ जैसा व्यक्ति जिसका क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र है और बिल्कुल विषय से हटकर मैं आज यहां पर बोल रहा हूं, तो मेरे ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है। मेरे मन के अंदर की जो चपलताएं हैं उनको मारने का एक साधन मात्र है ज्ञान, ये योग साधना, ये ज्ञान का मान सरोवर, ये निश्चित रूप से हम सबके जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज पहली बार आया हूं, मन करता हमेशा हूं, क्योंकि यहां पर वो सब मिल रहा है जो मेरे क्षेत्र में मुझे नहीं मिलता। हम नर्क से स्वर्ग की ओर यहां पर परिवर्तित हो चुके हैं। ये स्वर्ग का वातावरण है। कितनी शांति मिलती है। मेरे बाबूजी बैठे हैं शिव कुमार अग्रवाल जी, ये दिन भर वहां इंडस्ट्री के क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि अब बेटे बहुत विद्वान हैं, बेटों ने सब संभाल लिया है, लेकिन हम दोनों आज चर्चा कर रहे थे कि किस क्षेत्र में हम लोग आ गए, कितनी आत्मिक शांति है। रोज की अंतर कलह से बचकर हम लोग एक स्वर्ग रूपी वातावरण में यहां पर पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी कल्याण होगा। विज्ञान हमें शिक्षित बनाता है, विज्ञान हमें शिक्षित बनाता है, लेकिन आध्यात्म हमें दीक्षित बनाता है। हमें शिक्षित के साथ साथ दीक्षित भी होना अति आवश्यक है, और उसके लिए हमको इस योग साधना को अपने अंतर मन में धारण करना होगा। अपने ज्ञान के अपार भंडार से हमको दूसरे को भी लाभान्वित करने का प्रयास करना होगा। और अंत में मैं सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। दीपक को कहीं भी रख दो, द्वार पर, आंगन में, मंदिर में, शमशान में या चौराहे पर, वो स्वयं जलकर वो प्रकाश बांटता है। स्वयं जलकर आलोक देना ही उसका धर्म है। फूल की पंखुड़ियों को कभी परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। अंधेरे में भी उसकी गंध अपने होने का एहसास दिला देती है। और ठीक उसी प्रकार हम सबको भी मानवता की ऐसी अविनाशी सुरभि विकीर्ण करनी है, ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करना है कि संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में ब्रह्मा कुमारी इस महान ज्ञान सरोवर का नाम सर्वोपरि शिखर पर पहुंचे। और ये तभी पहुंचेगा जब इस महान यज्ञ में हम सब लोग आहुति देंगे, प्राण प्राण से सामूहिक अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए इस महान सरोवर में अपना पार्टिसिपेट करेंगे, इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इस विचारधारा को और पुष्पित पल्लवित दीर्घायु करने का प्रयास करेंगे, तभी आज के कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होती है और हम अपने मंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जय भारत, जय हिंद।
सबके सामूहिक प्रयास से ही विश्व का कल्याण संभव है। सुंदर विचार राजकुमार जी ने हम सबके सम्मुख रखे हैं। और ये बात भी हम बचपन से ही सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो यहाँ का ये आध्यात्मिक ज्ञान इंसान बनाने की शिक्षा दे रहा है, क्योंकि आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे कि आज इंसान तो हर जगह पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा हो रही है। आवश्यकता है इंसानियत पैदा करने की, ताकि संसार को बेहतर स्वर्ग और स्वर्णिम बनाया जा सके। इसीलिए आप कहीं से भी हैं, जैसे राजकुमार जी ने कहा कि मैं राधा स्वामी को मानता हूं, आप किसी को भी मानते हो, ये विद्यालय बाहें खोलकर सबका आह्वान करता है, सबको गले लगाता है, क्योंकि ये विद्यालय ये मानता है कि हम एक ईश्वर की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। और जब ये एक दृष्टिकोण हम सबके बीच होगा, तब सचमुच कितना सुख शांति और समरसता सारे संसार में होगी हम सब अनुभव कर सकते हैं। हमारे बीच से आदरणीय भराला जी विदाई लेने वाले हैं, इसीलिए मैं आदरणीय अंबिका दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि आप शॉल से और गिफ्ट दे करके उन्हें सम्मानित करें। आदरणीय भराला जी हमारे बीच से विदाई लेने जा रहे हैं। यद्यपि उन्होंने हम सबको यह आश्वस्त किया है कि इस बार थोड़े समय के लिए आए हैं, अगली बार भराला जी जरूर एक हफ्ते के लिए हमारे बीच रहेंगे, और आप सब तो यहाँ पे आनंद लेंगे ही अगले तीन चार दिनों में। हम सब करतल ध्वनि से भ्राता जी का अभिनंदन करेंगे और उन्हें देश सेवा समाज सेवा के लिए ईश्वर और शक्ति प्रदान करे, वो भारतवर्ष को पुनः स्वर्णिम बनाने में अपना योगदान दें और दूसरों से दिलाएं, ऐसी हम शुभकामना उन्हें अर्पित करते हैं। आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे महान विभूति को जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के पुरोधाओं में से, आधारों में से यदि मैं एक कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन विद्यालय के द्वारा कराए जाते हैं, चाहे वो माउंट आबू में हो या पूरे विश्व में हो, उसके आप बहुत ही सुंदर समन्वयक रहे हैं। नित्य नए नए जो सेवाओं की नवीनताएं हैं उसे आपने एक नया रूप और आकार दिया है। आप हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज और चेयरपर्सन एजुकेशन विंग के हैं। आपके लिए मैं यही कहूंगा कि ज्ञान योग के दीप जगाए हरेक के जीवन में प्रकाश भर रहे हैं आप, जन जन को सुखी बनाने के लिए ईश्वरीय मददगार बने हैं आप। ईश्वर की अंगुली पकड़कर आपने था चलना सीखा और आज देश विदेश के लोगों को चलाने के निमित्त बन गए हैं आप, चलाने के निमित्त बन गए हैं आप आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व शांति स्थापक परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता को आह्वान करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को मास सरस्वती को वंदन करते हुए 13 सर कॉन्फ्रेंस एंड मेडिटेशन रिट्रीट जो हमारा रिसर्च विंग है इसका अध्यक्ष आदरणीय अंबिका बहन जी, श्रीकांत भाई और संजय भाई और उनके सभी साथी रूपेश भाई, हल्का बहन जी, अन्य सभी बहनें जिस कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा आप सबको यहां बुलाया है इस महान संगठन में, परमात्मा के अवतरण भूमि में, कर्म भूमि में, योग भूमि में, ज्ञान भूमि में आप सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मंचासीन अन्य मैं रमेश पोखरियाल जी को तो देखा था, आज बहुत खुशी हुई है राजकुमार जी, राजकुमार तुकराल जी को मिलने के लिए, क्योंकि रमेश पोखरियाल जी भारत सरकार की शिक्षा मंत्री जी है और उनके साथ हमारा बहुत तालमेल है वैल्यू एजुकेशन के संबंध में। आज मैं बहुत खुश हुई है राजकुमार तुकराल जी, इन दोनों को विचार एक ही समान मैं देखने को मिलता है। और भूषण देवान जी से मैंने पूर्व में मिलने का अवसर मिला था शिक्षा सम्मेलन में ही इसी प्रांगण में। डॉक्टर शिव कुमार जी से मैं प्रथम बार मिल रहा हूँ शायद, मुझे बहुत खुशी है। और दूसरा डॉक्टर मैसेस अलका अग्रवाल जी और अन्य सभी भाई बहनों को जो प्रभु प्रेमी, स्वयं प्रेमी, विश्व प्रेमी, शांति प्रेमी, सद्भावना प्रेमी, हारमोनी प्रेमी, आप सबकी हारमोनी हाल में बैठे इसके लिए बहुत 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 बधाई। हमारे सम्मुख में प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्न पाठशानी जी भी उपस्थित है, उनकी परिचय आप सबको हुआ है, ये भी हमारा बहुत मित्र है, इस संस्था के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत कार्यक्रम में भाग लेते रहे। वो कुछ ही दिन पूर्व में दिल्ली में भी एक भारत गौरव अवार्ड देकर के भी सम्मानित किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले हारमोनी का एक एग्जाम्पल आप सभी ने देखा होगा, आज देखा आप सभी ने, कौन सी थी बताइए, हैं? हमारे बहनों ने डांस किया था, आपने सभी देखा होगा डांस में, देखो इसके आंख, उनके हैंड, उनका लेग, उनकी भावना और हेड हैंड एंड हार्ट सभी कितनी हार्मनी थे, कितनी समरसता थे, उतना तालमेल थे, उसी कारण से हम सबको एंजॉय मिला, अच्छा ही मिला ना, खुशी मिली। हर जीवन में हेड एंड हार्ट को हार्मनी का, हेड एंड हार्ट तीनों में समरसता है, एक दो का अंडरस्टैंडिंग है, एक दो को कोऑपरेशन है, तब तो हमारे जीवन में क्या होगा, खुशी होगी, शांति होगी, समरसता होगी और सुख होगा। परंतु आजकल लोग हेड एक सोच रहे हैं, हैंड एक काम करता है, लेग दूसरी काम करता है और हार्ट दूसरी काम करता है, इसके कारण मनुष्य दुखी है, अशांति है, रोगी, भय है, चिंतित है, क्योंकि ये तीनों में समरसता नहीं। इसको रिसर्च के रूप में रिसर्च करने के लिए हम कोशिश करते, परंतु ये वास्तविक हमारा स्वधर्म है, ये स्वभाव है, हमारा नेचर है, परंतु हमारा नेचर अभी बिगड़ चुका है और बिगड़ा हुआ नेचर को पुनः पुनः स्थापन करना, इसके लिए हमको आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता भी क्या है, लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सही माने से उसका अर्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन की आध्यात्मिकता अलग है, इस्लाम का आध्यात्मिकता अलग है, बुद्धिज्म की आध्यात्मिकता अलग है, हिंदू का आध्यात्मिकता अलग है। इसके लिए आध्यात्मिकता को धर्म में बांटा हुआ, वास्तव में आध्यात्मिकता धर्म नहीं है। आध्यात्मिकता एक स्वाभाविक नेचर है। शांति, शांति को हिंदू शांति कहेंगे, इस्लामिक शांति कहेंगे व क्रिश्चियन शांति कहेंगे, नहीं कहेंगे। शांति आध्यात्मिकता का एक अंग है, एक गुण है, एक स्वाभाविक नेचर है। कौन सी आत्मा को शांति नहीं चाहिए? बच्चों को लेकर के, बुड्ढों को लेकर के, जवानों को लेकर, हर व्यक्ति को शांति चाहिए। हर परिस्थिति में शांति चाहिए, हर जीवन में शांति चाहिए, मरने के बाद में भी शांति चाहिए। ऐसी शांति, इसको रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ी है। आज क्यों आवश्यकता पड़ी है? हमने जीवन से शांति को दूर कर दिया, क्योंकि हमारे जीवन में अंधकार ज्यादा हो गया, अज्ञान ज्यादा हो गया, ईर्ष्या ज्यादा हो गया, नफरत ज्यादा हो गया, क्रोध ज्यादा हो गया, अनेक नेगेटिविटी को हमने जीवन का नेचर बनाया, सोचने का आदत बनाया, संस्कार बना दिया, और हमारा कान पान आदि में भी उसका व्यापक अर्थ है। इसके लिए शांति हमारा जीवन से दूर हो गया, समरसता हमारे से जीवन हो गया, सद्भावना हमारा जीवन से ज्यादा दूर हो गया, दुर्भावना ज्यादा हो गया, ईर्ष्या द्वेष नफरत ज्यादा हो गया। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का वास्तव अर्थ है हमारे जीवन में इस नेचुरल शांति का अनुभव करें। और हार्मनी, हमारा दादी की एक बात मुझे याद आ रहा है, हमारा दादी प्रकाशमणि इस संस्था को लगभग 40 साल सुव्यवस्थित रीति से 125 सेवा केंद्र से शुरुआत हुई थी। उनकी काल से बाबा ने जब स्थापना किया 1937 से, बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा 1969 जनवरी 18 और ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी को नियुक्त किया। उसके बाद में उन्होंने देहांत करने के समय करीब 8,500 सेवा केंद्र इन्होंने निर्मित किया। इतनी बड़ी प्रमाण में इस संस्था को निर्माण करने के एक बात उन्होंने सदा कहती थी, हार, हिंदी में हार मान लिया माना हारमनी हो गया, हार मान लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, हमने आर्ग्यू करना, उसको क्वेश्चन करना व उसके प्रश्न पूछना आदि आदि को छोड़ करके मैं हारमनी कर दिया, नमस्ते कर दिया, ओम शांति कह दिया, ऑटोमेटिकली हारमनी हो गया, शांति हो गया, खुशी हो गया। मैंने ये बात अभी तक मैंने भूला नहीं। दादी के सामने बहुत प्रश्न आता था, बहुत क्वेश्चन आता था, बहुत आर्ग्यू करते थे, बहुत दादी ने बोलते, छोटे हो बड़े हो, विद्वान हो पंडित हो संत हो, नमस्ते ओम शांति, एक शब्द में ओम शांति में सब कुछ समाया हुआ। इसके लिए मैंने वही बात मैंने दादी को देखा। और हमारा दूसरा जो है, हमारा बड़ी दादी दूसरी इस समय में 103 इयर्स का है, दादी जानकी जी, इस संस्था का आज भी हेड है, हेड भी है, हेड भी है उसका, माना उसको हेड भी है और हेड भी है, संस्था का भी हेड है। उनका सदैव कहना, जो भी कुछ भी होता है उसको मुस्कुरा करके उसको संभाल लेना, मुस्कुरा करके उसको पी लेना। जैसे शंकर ने विष को पी लिया, इसके नेगेटिविटी को पी लेना, परंतु पी करके दूसरी साइड में छोड़ देना, उसको याद नहीं करना, उसको रिपीट नहीं करना, उसका मुख से बोलना नहीं, मन में चिंतन में नहीं डालना, उसको हार्ट में नहीं लेना, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। दूसरों की नेगेटिविटी को अपने में भरना नहीं। ये दो बातें मेरे जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए, हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी को देखने के लिए, हर परिस्थिति में एक शक्ति को प्राप्त करने के लिए मदद कर दी है। मैं इसके लिए, मुझे हेड हैंड एंड हार्ट में वास्तव में समरसता होना चाहिए। दूसरा जो है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में ये टू फेसेस ऑफ द सेम काइंग मैं मानता हूँ, क्योंकि साइंस भी सत्यता में विश्वास करते हैं, सत्यता का खोज के लिए प्रयास करते हैं और सत्यता का खोज करके आगे बढ़ने के लिए अनेक सुख सुविधा को देते हैं, परंतु आध्यात्मिकता है वास्तव में उसका संस्कार को स्वाभाविक बनाने के, नेचर बनाने के मददगार है। इसी कारण से आध्यात्मिकता जहां है वहां ऑटोमेटिकली सुख शांति होना चाहिए। भारत एक जमाने आध्यात्मिक भूमि था और हमारा राजकुमार जी भी आध्यात्मिक भूमि से आए हुए, बद्रीनाथ केदारनाथ आदि आदि स्थानों पर। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इलेक्शन के बाद में सीधे केदारनाथ में चले गए तपस्या करने के लिए, इस प्रकृति की गोद में, भगवान की गोद में, इसकी आडम्बर के जीवन, इतनी होड़ पोड़ के जीवन में छोड़ करके करीब 17 अवर्स इन्होंने तपस्या भी कर लिया। वास्तव में तपस्या क्या है? तपस्या जंगल में जाना ही तपस्या नहीं है, और वास्तव में तपस्या नेगेटिविटी को छोड़ना ही तपस्या है। मेरे अपने दृष्टि व्हाट इज योगा, योगा जो जीवन में समय प्रति समय बाहर से आने वाले, अंतर से होने वाले, संस्कार से होने वाले, स्वभाव से होने वाले, पर्यावरण से होने वाले, प्रकृति से होने वाला, नेगेटिविटी की सिचुएशन से उसको दूर करने के लिए पॉजिटिविटी को सोचना, यही वो योग है वास्तव में। इस योग को अपनाने के लिए परमात्मा के साथी बनाना जरूरी है, परमात्मा को अपना जीवन का साथी बनाना। इसको साथी बनाना कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इट इज द मेंटल रिलेशन है, स्पिरिचुअल रिलेशन है। जितना हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, पावन होगा और सकारात्मक सोच होगा, हम प्रभु प्रिय हो सकते हैं, स्वयं प्रिय भी हो सकते हैं, लोकप्रिय भी हो सकते हैं, विश्व प्रिय भी हो सकते हैं। इसके लिए क्लीन माइंड, क्लीन हार्ट, क्लीन हेड होना चाहिए। आजकल हमारे हेड को स्वच्छ नहीं बना के रखते हैं, उसी के लिए हेड में कोई ना कोई, इधर कितने लोग हैं जिसको क्रोध नहीं आते, हाथ खड़ा करें। अधिकांश लोग, एक माता जी दो, इनके लिए जोर से ताली बजाए। देखो क्रोध, क्रोध एक हमारा आध्यात्मिकता नहीं है, क्रोध ये शक्ति नहीं है, ये कमजोर है, ये कमजोर है, ये कमजोर इसके लिए आया है, हमने कहीं बाहर से एक्सेप्ट कर लिया, दूसरों को नेचर को एक्सेप्ट कर लिया, अपने स्वभाव को बिगाड़ दिया, अपने शांति को बिगाड़ दिया और समरसता को बिगाड़ दिया, सद्भावना को बिगाड़ दिया। जिस दिन क्रोध आता है हमारे अंदर सद्भावना नहीं है, हमारा समरसता नहीं है, हमारा ज्ञान भूल गया, सहन शक्ति को भूल गया और आध्यात्मिकता है ही नहीं है। क्रोध, जितना क्रोध है उनके जीवन में आध्यात्मिकता का जीरो मार्क्स था समझो। उस समय में कम से कम जिस समय में क्रोध आता है उस समय में सबसे पहले हमारा अंग खराब होता है, हमारा चेहरा खराब हो जाता है, हमारा हार्ट खराब हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम खराब होता है और भी बहुत चीजें खराब होता है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके लिए क्रोध एक नेगेटिव क्वालिटी है, परंतु आजकल ये नेगेटिव क्वालिटी हर आत्मा के अंदर संस्कार बन चुका है, परंतु इसको छोड़ना ही आध्यात्मिकता है, इसको छोड़ना ही योग है, इससे भूलना ही योग है। इसको योग हमारा शांति के माध्यम द्वारा, सद्भावना के माध्यम द्वारा, परमात्मा के कनेक्शन के माध्यम द्वारा, ईश्वरीय शिक्षा के माध्यम द्वारा, मुझे बहुत खुशी और आनंद हो रहा था, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमात्मा क्यों अवतरित हुआ, स्वयं परम शिक्षक है, ईश्वरीय शिक्षक, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री कहा जाता है, तीनों कालों का। हम आते हुए धरती पर आए, जन्म तो लिया खुशी के दिन, और उसी दिन ही हमारा सर्टिफिकेट लेके आया, कौन सा सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट उसी दिन हाथ में आया, परंतु जिस दिन डेट होगा उसमें डेट लिखा नहीं होगा आपको मालूम नहीं, परंतु डेथ सर्टिफिकेट क्या लेगा। इसके लिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हमें भूल जाते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या हम भूल जाते हैं। ठीक है हम मंत्री बनना, अनेक साधन करके पोजिशन लेना वो अलग चीज है, परंतु वो सारी हमारा स्टेटस सेवा अर्थ के लिए, दैट इज नॉट ए परमानेंट स्टेटस। शांति हमारा परमानेंट स्टेट है, सत्यता हमारा परमानेंट स्टेट है, ज्ञान हमारा नेचुरल स्टेटस है। इन स्टेटस को हम अपनाने के लिए आध्यात्मिक चाहिए, ईश्वरीय शिक्षा चाहिए। जितना आध्यात्मिक और ईश्वरीय शिक्षा होगा मेरे जीवन में सदा खुशी, संतुष्टता, समरसता और आनंद रहेगा, प्रसन्नता रहेगा। नहीं तो बहुत लोगों को मैं देखती हूँ प्रसन्नता जीवन से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, चिंता में डूब गया। बहुत छोटे बच्चों के चेहरा देखते वो प्रसन्न रहते हैं, उनको स्टेटस मालूम नहीं, पैसा मालूम नहीं, पोजीशन मालूम नहीं और डिग्री नहीं, डॉक्टरेट नहीं, कुछ भी नहीं है, परंतु प्रसन्न रहता है। परंतु हम भी, हमारा तो प्रसन्न परेशानी हमारे सामने है, सदा प्रसन्न रहता है, परंतु हम सबको ऐसी प्रसन्न रहने का आदत होना चाहिए, वो नेचर बनाना चाहिए। वो कहां से मिलेगा, कोई बिग बाजार में नहीं मिलता है, सुपरमार्केट नहीं मिलता है, परंतु वो कहां मिलेगा, हमारा नेचर को, स्वभाव को नेचुरल बनाना चाहिए, उसको योग से मिलता है। मैंने हमारे जीवन में दादी प्रकाशमणि जी को देखा, उन्होंने एक दिन भी कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा, उनके चेहरे पर देखो सदा प्रसन्न खुश रहते। उतने ही हमारे ब्रह्मा बाबा की, आज भी उसकी कुटीर में जाता है, मुरली सुनते हैं बाबा ने, वह उनका चेहरे पर सदा प्रसन्न रहता है। हम कितने भी सोच करके बाबा के कमरे में जाते हैं, एक मिनट में साइलेंस हो जाता है, एक सेकंड में वरदान मिलता है, एक सेकंड में नया प्रेरणा मिलता है, एक सेकंड में नई शुभ संकल्प रचना होती है, नया सोच का आरंभ हो जाता है, मैंने देखा। इसके लिए हम हरेक व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता का गुण होगा, दूसरों को प्रेरणा मिलेगा, दूसरों को इंस्पिरेशन मिलेगा, दूसरों को शेयर कर सकता है, दूसरों को केयर कर सकता है, दूसरों को एनलाइट कर सकता है, दूसरों का जीवन को भी अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। इसके लिए हम हमारे जीवन में प्रसन्नता को कायम करना, वो गुणों को अपनाना, इसके लिए हारमोनी भी जरूरत है। हारमोनी इज वन पार्ट ऑफ लाइफ है, परंतु हारमोनी होगा तो हर जीवन में सुख शांति होगा, हर परिस्थिति में हारमोनी होना चाहिए। अभी हमारा भाई दीवान साहब तो मिलिट्री से आए हुए हैं, जनरल से लेकर के एक सिपाही तक हारमोनी होना चाहिए, तब तो ऑर्गेनाइजेशन एक डिसिप्लिन रहता है। हर इंस्टीट्यूशन में हारमोनी होना चाहिए, हर धर्म में हारमोनी होना चाहिए, हर धर्म में इंटरफेथ में भी हारमोनी होना चाहिए, और हमारा पड़ोसी देशों में हारमोनी होना चाहिए। परंतु हमारा हारमोनी अभी बिगड़ा हुआ, इसके लिए रोज हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़ा है, और चाइना और इंडिया के बीच बीच में कुछ न कुछ होता रहता है। उतना ही दूर क्यों, हमारे इंटर स्टेट में भी कई बार हारमोनी नहीं है, और इंटर फैमिली में हारमोनी नहीं है। इन सारे कारण से कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की कमी है, दैवी गुणों की कमी है, और स्पिरिचुअलिटी की कमी है। और इन चीज को सोच समझ करके अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु कैसे बनेगा, तो सिर्फ पैसे से विश्वगुरु नहीं बन सकता है, बड़े बड़े महल बनाने से नहीं बन सकता है, और बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंग बना करके विश्वगुरु नहीं बन सकता है। ऐसे बिल्डिंगों में रहने वाले व्यक्ति भी ऐसे ऊंचा बन जाए, ऊंची लाइफ बने, इसके लिए बाबा ने कहा बी टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ लाइट, टावर ऑफ माइंड, टावर ऑफ हैप्पीनेस, एंड बी होली, बी होगी, बी गुड, बी डू गुड। इतना ही सिंपल मैसेज ने बाबा ने दिया। मैं समझता हूँ आप सभी इस मैसेज को अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे तो हमारा भारत स्वर्ग भूमि होगा। ऐसी भूमि को बनाने वाले सबको मैं बाबा से आशीर्वाद मिले, और दिव्य बुद्धि भी, दिव्य नेत्र भी, दिव्य चक्षु मिले। चक्षु लेने वालों को ओम शांति नमस्ते।
भारत सरकार ने तालियों में अभी तक टैक्स नहीं लगाया है। और एक सर्वे कहता है कि आप जितना जोरदार ताली बजाते हैं उतने आप स्वस्थ रहते हैं। तो इस मंच से हमारी ये मंगल कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अध्यात्म की ओर गहराई में भी उतरते चलें। भ्राता जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं यही कहूंगा कि हर शब्द एक शास्त्र था, हर शब्द एक शास्त्र था, वाणी में बहुत गहराई थी। यदि हम उनके शब्दों पर चिंतन करें तो सचमुच हम पाएंगे कि इनकी आज कितनी महती आवश्यकता है। राधा जी भारतवर्ष की बात कह रहे थे, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कई देशों में, विदेशों में ये बात कही जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। तो कितनी बड़ी सी बात है, और हमारा सीना भी ये सुन करके गर्व से 56 इंच का हो जाता है कि सचमुच हम ऐसे देश के वासी हैं जिस देश में जन्म लेने के लिए लोग तरसते हैं। हम सबका अब ये एक दायित्व बन जाता है कि पुनः उसे आध्यात्मिक गुरु या शिखर पर ले जाने के लिए हम सब जी जान से जुड़ जाएं। और जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि न केवल बाहरी तौर से हम इसे विकसित करें, लेकिन आंतरिक तौर से विकसित करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारी सारे वेद शास्त्रों के यदि आप उठाकर देखें तो सबका एक ही सार निकल कर आता है, नो दाई सेल्फ, खुद को जान लो। और जब हम खुद को जानने की ओर आगे बढ़ते हैं वहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है, और वहीं से हम न केवल अपना विकास कर पाते हैं लेकिन समाज का, संसार का विकास कर पाते हैं। तो उसकी ओर एक कदम आप सबने बढ़ा ही दिया है। तो इन अगले 3-4 दिनों में हम बहुत गहराई से इन बातों पर विचार विमर्श भी करेंगे और आप आध्यात्मिक चिंतन भी करेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस विषय पर और सुंदर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर शिव कुमार जी हमारे बीच हैं। आप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं LSC इंफ्राटेक लिमिटेड के, और कुमार ग्रुप के आप चेयरपर्सन हैं। 16 वर्ष की आयु से ही आपने व्यापार शुरू कर दिया था, और न केवल अब उत्तराखंड में लेकिन पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छी तरह से सम्मानीय रूप से जाने पहचाने जाते हैं। आपको अनेक इनामों से प्राइज से नवाजा गया है, जैसे उद्योग रत्न, कुमाऊं गौरव आदि आदि। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार जी को कि आज के सुंदर विषय पर अपने विचार रखें।
नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई रुपेश जी की बात को से सहमत नहीं हूं। इन्होंने मेरे बारे में काफी कुछ झूठ सच बोला है और मैं माफी मांगता हूं। आज सभी अपनी इस सभा में, कल जैन धर्म का एक सिद्धांत है कि वो साल में एक दफा माफी मांगते हैं, मगर मैं अपने सारे जीवन से आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं अगर मेरे जाने और अनजाने में किसी भी प्रकार से, मेरे मनसा वाचा कर्म से अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची हो या पहुंचे। आज भी जो मैं मंच पे बोलता नहीं हूं, मगर मैं बोलता हूं तो उसके लिए माफी, तहे दिल से माफी मांगता हूं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान सरोवर में दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों और एवं मंच पे विराजमान सभी महानुभवों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इस समारोह में सम्मिलित सभी लोग मुझसे गुणी एवं ज्ञानी अनुभवी हैं। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपने अनुभवों का आपके साथ बांटने का मौका मिला। हम ब्रह्म कुमारी संस्था से पिछले 50 सालों से जैसे जुड़े हैं हापुड़ से। हमारे एक अंकल होते थे, वो काफी टाइम से हमसे भी ज्यादा जुड़े हुए थे, तो वहां की जो भी कुछ समस्याएं होती थी, क्योंकि जब ये संस्था शुरुआत हुई, हर संस्था की शुरुआत होती है या किसी भी कार्य की शुरुआत होती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम को संस्था ने सभी लोगों, समाज के सभी लोगों ने उनको फेस किया और दूर करा और गलतफहमियां दूर की गई। जब बहन सूरजमुखी हमारे रुद्रपुर में अपनी ब्रांच की, संस्था की ब्रांच की ओपनिंग करने आई, तो वही अंकल मेरे आए थे, श्री हरचरण दास जी। उन्होंने बहन सूरजमुखी और संस्था की जिम्मेदारी पूर्व हापुड़ की तरह से हमारे ऊपर डाली कि भाई संस्था को भी, क्योंकि मैं भी हापुड़ से रुद्रपुर से हो चुका था, और हमारे ऊपर डाली कि संस्था की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो तभी से हम इस पिछले 50 साल से और 1984 से संस्था से जुड़े हुए हैं, और पूरा इस संस्था से बहन सूरजमुखी जिसे जुड़े होने से मदद और ज्ञान लेते रहे हैं और यथासंभव सहयोग भी करते रहे हैं। बहन सूरजमुखी रुद्रपुर शाखा को बहुत अच्छी तरह से चला रही हैं और इसके लिए हम सभी इनके आभारी हैं। हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से पिछले 50 सालों से जैसे मैंने कहा जुड़े हुए हैं, अन्य संस्थाओं के मुकाबले जैसे भाई राजकुमार ने भी कहा कि सभी लोग सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो अन्य संस्थाओं के मुकाबले यह सामाजिक संस्था, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है। यह बहुत ही सच्ची और निष्पक्ष ज्ञान और आदान प्रदान करने वाली व्यक्तित्व का विकास तथा समाज के उत्तम स्वास्थ्य और सुख शांति और आनंद के लिए कार्य करने वाली सर्वोपरि संस्था है, क्योंकि WHO ने भी अपने स्वास्थ्य की परिभाषा में बॉडी, माइंड, सोल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल को जोड़ा है। तो जब तक आप स्पिरिचुअल मतलब है स्पिरिचुअल नहीं होंगे, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी मतलब है कहा है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं, उसका पता आप योग और मेडिटेशन से ही, मतलब राजयोग से ही मतलब जान सकते हैं, और तभी अपनी जिंदगी को मतलब स्वास्थ्य के प्रति वफादार हो सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। WHO ने भी मतलब है उत्तम स्वास्थ्य की परिभाषा बॉडी, माइंड, सोल, सोशल एंड मोस्ट स्पिरिचुअल, मतलब तक है स्पिरिचुअल जीवन में व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य और सुख शांति और आनंद जैसे प्राप्त करना है, तो उसके लिए अपने जीवन में सफर में प्राप्त अनुभवों को मैं अपना शेयरिंग आपसे बांटना चाहूंगा कि हम सब परमात्मा की संतान है, मगर फिर भी जो हमारे माता पिता है उसकी हमारी चॉइस नहीं है कि हमारे माता पिता कैसे होंगे, कौन होंगे, वो हमारी चॉइस नहीं है, बट हमारे फैमिली लाइफ पार्टनर और बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उसमें भी कोई चॉइस नहीं है। बट जीने की चॉइस में आपका कोई कंपल्सन नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि कैसे आपको अपनी जिंदगी को कैसे मतलब है कंप्लीट जीना है। उसका सबसे बेस्ट मतलब है, जो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने अनुभव किया है कि आदमी सच बोले, सच बोले। महात्मा गांधी ने सच को सारी दुनिया को मतलब लिया। सच वो ताकत है जो आपके दिल से निकलती है, दिमाग से नहीं निकलती है। दिल कहता है कि मनसा वाचा कर्म से, कि अगर दिल को इंटैक्ट रखना है तो हमें दिल की बात सुननी पड़ेगी। तो अगर व्यक्ति मतलब सच बोले और धर्म से कर्म करे, धर्म से कर्म करने का परिभाषा यह है कि धर्म की परिभाषाएं स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में हम लोग सबके अलग अलग धर्म की परिभाषाएं हैं, बट धर्म की परिभाषा है कि आपकी मनसा वाचा कर्म से, आपकी मनसा वाचा कर्म से पर्सन इन पर्सनल, पब्लिक इन लार्ज, समाज और एनवायरमेंट का अहित नहीं होना चाहिए। अगर कोई लॉ भी मुझे परमिट करे किसी काम करने का और समाज और एनवायरमेंट के हित में नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा वजूद समाज और एनवायरमेंट से है। इसलिए तो पहले नंबर पे सच बोले, धर्म से कर्म करे। धर्म करने की परिभाषा मैंने बताई जो मेरी अपनी है, आप हर एक की अलग। तीसरा मतलब जो मौका परमपिता परमात्मा जो मौका किसी की मदद के लिए मौका दे, वो अपने बूते के मुताबिक दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेल्ड। फिर आपको कहीं भी किसी मस्जिद गुरुद्वारे में आपको किसी प्रकार के लिए मदद के लिए नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा फंडा सारे स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा हुआ है, 5F का फंडा लिखा हुआ है कि लाइफ को कैसे बेस्ट, 5F मतलब है। तो ऑर्डर हर आदमी अपने आज के युगों में, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हर आदमी ने ऑर्डर अपने मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन भी जैसे हमारा 130 करोड़ का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर आदमी ने अपने मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी परिभाषाएं अपनी अपनी है। तो आज उसी से ही सारे विकार समाज में, विकार उसी से है। अगर ऑर्डर जो स्पिरिचुअल ग्रंथों में जो ऑर्डर 5F का लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर जिए तो आप मतलब है अपने लाइफ को ईश्वरीय लाइफ जी सकते हैं इंसान। तो 5F में फर्स्ट F है जो फिटनेस, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, क्योंकि निरोगी काया नहीं होगी तो आप मतलब है अपने जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सकते और समाज में भी आप जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और फिटनेस को भी जो WHO ने भी कहा है, बॉडी स्वास्थ्य का वजन रिडक्शन या खूबसूरत इज नॉट ए स्वास्थ्य, बॉडी माइंड सोल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल, WHO ने भी जोड़ा है, तब आप स्वस्थ हैं। तो फर्स्ट पे सबसे पहला है फिटनेस, दूसरा F है फ्रेंड, मतलब है हम सब भी फ्रेंड हैं। बट फ्रेंड की परिभाषा चाणक्य ने भी दी है कि फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड मेरी लाइकिंग चॉइस प्रायोरिटी है, इट इज नॉट ए कंपल्शन, वो मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी पसंद है। आफ्टर नोइंग टू ईच अदर, मतलब उसके मेरिट्स डीमेरिट्स जानने के बावजूद भी मैं उसका दोस्त बनाऊं, उसको मैंने अपना दोस्त बनाया है। तो फ्रेंडशिप में चाणक्य ने कहा कि दोस्त तो जो मेरा दोस्त है जिसको मैंने चुना है और उसके दोस्त भी उस जैसे ही होंगे। तो दो मेरे दोस्त का दोस्त 100 गुना दोस्त और मेरे का दोस्त का दुश्मन है वो मेरे का 1000 गुना। तो चाणक्य ने भी दोस्त की परिभाषा दी है, बाकी तो हम सामाजिक हैं। और फ्रेंडशिप, भगवान भी देवता है, देवता कौन है, वो भी सबसे बड़ा दोस्त है। दवाई भी दोस्त है, जो इंस्टेंट रिलीफ दे, जो कुछ देता है ज्ञान दे या आपको मदद करे, वो देवता है। तो भगवान, दवाई और जो इंस्टेंट कहते ना, मतलब है फ्रेंड इज नीड, फ्रेंड इज डीड मतलब है। तो फ्रेंड जो है दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे फिटनेस है, सेकंड पे फ्रेंड है, थर्ड पे फैमिली है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं फैमिली को आपने तीसरे नंबर पे रखा है, फैमिली में ही एंड शी एनीबडी एल्स, बाप बेटा भाई बहन कोई भी है, अगर वो फ्रेंड की परिभाषा में आता है तो फ्रेंड है, अदरवाइज तो फैमिली की जिम्मेदारी है आपके पास, जैसे मैंने कहा कि आप अच्छी तरह नहीं आएंगे। अब तीन चीजें हैं, फिटनेस आपकी अच्छी होगी, जैसे फिटनेस की परिभाषा सारे स्पिरिचुअल बुक्स में भी लिखा हुआ है, मैंने भी प्रेजेंटेशन में दिया है कि फिटनेस बॉडी माइंड सोल एंड मोस्ट सोशल एंड स्पिरिचुअल। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे तब तक आप जो है ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते ना ही मतलब है अपने फैमिली की जिम्मेदारी समाज की। तो फिटनेस में दूसरा फ्रेंड भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, फिटनेस में आपको ही कंट्रीब्यूट करना है। जो 50,000 मेरे से पूर्व 50,000 थॉट्स आपको आती हैं, दिन में 50,000 थॉट्स आती हैं, उन 50,000 थॉट्स को और दिमाग जो है अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करता है, वो कहता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मगर दिल की हम नहीं सुनते हैं। अगर हम दिल की सुनेंगे तो हम मतलब और योग और मेडिटेशन से फोकसिंग कर लेंगे और हम उसको मतलब है अपने टास्क को टारगेट को कंसिडर कर लेंगे। तो फिटनेस में आपको खुद ही कंट्रीब्यूट करना होगा, दूसरा फ्रेंड नहीं कर सकता, वो डांट सकता है, सलाह दे सकता है, मदद कर सकता है। तो फिटनेस फर्स्ट इज दैट वाई, सेकंड एफ इज प्रोवाइड इज ए फ्रेंड इज सेकंड नंबर, क्योंकि जहां फ्रेंड काम आ जाएगा, फ्रेंड इज नीड, फ्रेंड इज नीड, जो है जो वक्त पे काम है वो दोस्त है, बाकी तो हाजिरी लगाने वाले हैं कि हाय हुसैन हम ना हुए। तो फ्रेंड इज सेकंड नंबर पे, जब फिटनेस आपकी अच्छी होगी, आपके फ्रेंड अच्छे होंगे, जो आपकी चॉइस आपके लायक फ्रेंड पर्सन नोन बाय द सोसाइटी, सोसाइटी में एक पर्सन परफेक्ट, तो आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाएंगे, फैमिली के समाज की तरह से मतलब है। तो इसलिए फिटनेस फर्स्ट, सेकंड इज ए फ्रेंड, थर्ड इज ए फैमिली, मतलब है जब तीन चीजें अच्छी होंगी तो आपको कॉन्फिडेंस होगा और आपके कमिटमेंट्स होंगे, आपके वर्किंग स्टाइल अच्छा होगा तो दुनिया भी आप पे फेथ करेगी, मतलब है यू विल गेन द फेथ फ्रॉम सोसाइटी। जब फेथ होगा, फिटनेस होगी, फ्रेंड अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी की जिम्मेदारी निभाएंगे, समाज से आपको रिकॉग्निशन होगा, तो लास्ट इज फाइनेंस, लक्ष्मी जी विल फॉलो टू यू, लक्ष्मी जी विल फॉलो टू दी। आज समाज में जो विरक्त आई गई है कि हर आदमी ने 5F का ऑर्डर चेंज कर लिया है, उसे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों, मैं परमात्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, मुझे किस लिए भेजा है, मेरी क्या मुझे टास्क है, मुझे कैसे जीना है और मुझे कैसे मतलब है लाइफ को जीना, कंट्रीब्यूट करना है समाज को, उसे कुछ नहीं पता। वो योग मेडिटेशन से ही आप इसको भली भांति अपने को फोकसिंग और लाइफ को डेस्टिनेशन में टास्क अचीव कर सकते हैं। तो फैमिली इज दिस इज द थिंग, और बहुत सारी बातें हैं, टाइम बहुत ज्यादा है, मैंने पूछा कि बहुत सारे कुछ हैं, पिछले 4 दिन रहूंगा और मैं इस संस्था में दोबारा आया हूं, 50 साल जुड़ा हुआ हूं, अपनी जिंदगी के लाइफ को मैंने स्ट्रगल्स को एंजॉय किया है, काफी 50 साल से मैं जुड़ा हूं, काफी बहन जी 84 से ही, बट टाइम मिला और ईश्वर की कृपा जब होती तभी तो मैं दोबारा आया हूं, अभी 10 साल बाद दोबारा आया हूं, और मैंने संस्था के बारे में बताया कि ये संस्था मतलब और बहुत सारी सभी संस्थाओं को मैं भी जानता हूं, सभी साधु संतों सभी संतों को जानता हूं, मगर ये सबसे जीने का, परमात्मा से आपका मिलन का, आप कौन हैं, क्यों हैं, क्या हैं, अपने बहुत स्वच्छता से और आपके बारे में, आपके समाज के देश दुनिया को कैसे विकसित होना है, विश्व गुरु कैसे बनना है। जब मैं 10 साल पहले आया था तो यहां तब मुझे जानकारी मिली कि 108 देशों में 8,000 ब्रांच हैं, मगर अब जान के बड़ी खुशी हुई कि 140 देश में 9,000 शाखाएं हैं। धन्यवाद। और फिर एक दफे माफी मांगूंगा अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो। धन्यवाद। बहुत सारी और भी पेपर हैं तो मुझे मौका देंगे, मैं पढ़ूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिव कुमार जी। अभी तो आगे एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सचमुच अपने जीवन से जब हम प्रेरित करते हैं तो इस प्रकार से अनेक हमारे साथी भी तैयार होते हैं और जो हमें पितृतुल्य गुरु तुल्य मानते हैं ऐसे लोग भी तैयार होते चलते हैं। आपने 5F की बात कही और शुरुआत ही क्षमा से की, मूल्यों की बात आपने कही है, सत्य दया करुणा क्षमा, ये सचमुच ऐसे मूल्य हैं। जैसे आदरणीय भ्राता जी भी इससे पूर्व कह गए थे कि शांति का कोई धर्म नहीं होता, वैसे इन मूल्यों का कोई धर्म नहीं है। और विज्ञान या आज की शिक्षा हमें VIP तो बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन अध्यात्म हमें VIP की एक अलग परिभाषा बताता है और वो परिभाषा है वैल्यूज इन पर्सनैलिटी। जब हमारे जीवन में हमारी पर्सनालिटी में वैल्यूज आती चली जाती हैं तो सचमुच जीवन ऐसा आदर्श और महान बनता चलता है जिसकी आज के दौर में सचमुच सभी को बहुत आवश्यकता है। तो यहां से हम सब ऐसे ही VIP बन करके जाएंगे, ऐसे हम सुंदर संकल्प करें। तो कौन कौन आप में से VIP बन के जाना चाहेगा यहां से? हा? बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबका ये सुंदर ध्येय समाज को एक सुंदर प्रेरणा प्रदान करेगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर अलका अग्रवाल जी को, जो कि डायरेक्टर हैं मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद यूपी की। आप डायरेक्टर भी हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ की, और सबसे सुंदर सी बात कि आपको अवार्ड प्राप्त हुआ है विमेन सुपर अचीवर का। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल जी का।
बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी। ओम शांति। To the distinguished gathering sitting on and off the dais, I consider it a matter of great privilege that I stand before you to extend my greetings in the reception session during the 13th SIR conference and meditation retreat on co-creating harmony through research and spirituality. With my limited understanding, I can say that through the spiritual science of meditation, one can experience the peace and harmony that will allow to receive messages of love and divine inspiration. While doing this exercise, you feel that you are masters and co-creating this period of rising frequencies and achieve higher dimensional levels. Being spirituality aligned means discovering as to who you are and the values by which you live. In the process, you connect to a higher level of intelligence and power which is better than the material world. In such situations, being spiritual becomes the way of life. When one goes through life without any purpose, it means he is sailing endlessly and needs spiritual alignment. Those who are spiritually aligned know that their dreams are within their reach, and they also know that to do in order to get there. People who are experiencing spiritual alignment are living life on a path set forth by the universe. Spiritual alignment indicates that our body, mind, and soul are all facing the same direction to move forward, and to achieve this state, we have to meditate. Upon achieving spiritual alignment, we will be on the path of achieving our full potential. Brahma Kumaris ke spark wing mein jo ye adhyatma ke upar research ka kaam kar raha chal raha hai, uske liye main kehna chahungi ki ye ek aisa kaam ho raha hai jo is kal yug ke liye mujhe lagta hai sabse zyada zaruri और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि जो भी काम हो रहे हैं, जिन क्षेत्रों में भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उन सब की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर हम इस रिसर्च को पूरी कर लेंगे। अध्यात्म की रिसर्च जिस दिन पूरी होगी, उस दिन हम दिल और दिमाग दोनों से इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि उस समय हमें किसी और रिसर्च की जरूरत नहीं है। नई नई चीजें हम बना रहे हैं, नई नई चीजों का आविष्कार क्या कर रहे हैं हम, क्यों ये सब आविष्कार, ये सब अनुसंधान हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही है। हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, हम दूसरे देशों से, दूसरे लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब हम अध्यात्म में पूरे उतर जाएंगे, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, हमारा दिल और दिमाग ये मानने को तैयार हो जाएगा कि नहीं, संतुष्टि, सामर्थ्य, सब कुछ इन्हीं में है, यही है, अध्यात्म में ही है, तो हम इस तरीके की और रिसर्च और अंधी दौड़ में भागने का प्रयास नहीं करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, विमेन एम्पावरमेंट का अगर कहीं आपको जीता जागता नमूना या उदाहरण देखना है तो वो आप ब्रह्म कुमारीज में देखिए। इससे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट हो नहीं सकता। मैं एक परिवार में भी रहती हूँ और मैं एक अपने शिक्षा के क्षेत्र को भी संभालती हूँ। वहाँ हमें दलीलें दे देकर कहना पड़ता है कि विमेन एम्पावरमेंट करिए, हम कुछ ऐसा करें कि विमेन एम्पावर हो जाए, लेकिन ब्रह्म कुमारीज को देखकर ऐसा लगता है कि हमें दलीलें देने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी साबित या प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रही हैं और जो आपने कर दिखाया है वो वाकई तारीफे काबिल है और उससे बढ़कर विमेन के लिए और कोई भी बात नहीं हो सकती। या उन्हें ये कहा जाए कि जैसे हम महिलाओं के लिए एक अलग से लाइन बना देते हैं, महिलाएं पहले जाएंगी, पुरुष हमें एक अवसर देते हैं, यहाँ पुरुषों को अवसर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पुरुष तो खुद समर्पित हैं। देखिए है ना बड़ी बात। और अब हम इस मैंने जब ये देखा और मैं इस चीज से इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ी, बहुत सारी चीजें मैंने देखी, लेकिन मुझे लगा कि अगर ठहराव कहीं है तो वो सिर्फ यही है। और यहाँ आकर जो संतुष्टि का आभास एहसास मुझे हुआ, मुझे लगता है मुझे कहीं और आगे भटकने की अब आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ मैंने पा लिया। बहुत वर्ष पहले, आज से 30-40 साल पहले, क्योंकि मैं राजस्थान में ही पली बड़ी हुई हूँ, यहीं पे मेरे पिताजी सर्विस किया करते थे, तो सभी जगहों को मैं भ्रमण किया करती थी। मैं 2-3 बार पहले भी माउंट आबू आई, एक हिल स्टेशन देखकर जो एक बच्चे के मन में खुशी होती है, नक्की लेक में बोटिंग कर जो अच्छा लगता है, सनसाइट प्वाइंट को देखकर जो मन में खुशी होती है, वो मैंने उस समय महसूस करी। लेकिन आज हम दिन में थोड़ा सा वक्त मिला तो बाहर घूमने गए, मुझे लगा नक्की लेक में क्या है, कुछ भी नहीं, ये क्या है, यहाँ पर जो भी चीजें देखी उनको देखकर मुझे लगा इस आश्रम से पवित्र और इस आश्रम से अच्छी और कोई चीज माउंट आबू में नहीं है जो हमें यहाँ आने के लिए आकर्षित करे। ये उस समय नहीं पता था, लेकिन आज मुझे ये पता लगा है और वाकई मैं दिल से इस संस्था की बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये बहुत से ऐसे भटके हुए लोगों को राह दिखाएगा जिसकी आवश्यकता हमें आज है। क्योंकि आज हमारे मन, हमारे मस्तिष्क जितने ज्यादा विषाक्त हो चुके हैं, इतने ज्यादा उनमें खराबियां भरती जा रही हैं, उनको बाहर निकालने का काम जो ये संस्था कर रही है उससे अच्छा कार्य कोई हो नहीं सकता। और इसी तरीके के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम आप लोगों के बीच कुछ सीखने आए हैं और समय मिलने जैसे जैसे समय मिलेगा हम यहाँ आएंगे। और आपका एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी वो है ब्रह्म कुमारीज का डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन। इतना डिसिप्लिन मैंने किसी और संस्था में नहीं देखा। हम भी शायद माइक पर बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आवाज थोड़ी कर्कश है, महसूस हो रहा है, लेकिन कोई भी वीके जब यहाँ आकर बोलता है तो इतनी मधुर वाणी निकलती है जो कानों में रस घोलती है। ये चीजें हमें सीखनी है और धीरे धीरे हम ये सब चीजें सीखेंगे। बहुत सारी ज्ञान की बातें बहुत यहाँ बुद्धिजन बैठे हुए हैं उन्होंने आप सबके सामने की हैं और वाकई ये सब सुनने से थोड़ी समझ में आती हैं, अभ्यास करने से उससे ज्यादा समझ में आती हैं, लेकिन जब उसको पूरी तरह से जी लिया जाता है तब हम उस चीज को पूरी तरह से प्राप्त करते हैं। और उसको अभी प्राप्त करने में समय है और इस ओर हम और आप सब अग्रसर हैं, इसीलिए अभी हमारे कदम थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन पूर्णता की तरफ आएंगे उस दिन हम भी ब्रह्म कुमारीज की तरह आदरणीय होंगे, पूजनीय होंगे। इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि अगर भारत में इस तरीके की संस्थाएं स्थापित होती हैं और इस तरीके के जो बातें हैं वो आम जनता तक पहुंचाई जाती हैं, तो हमें बार बार ये कहना कि भारत फिर महान बनेगा, भारत फिर विश्व गुरु बनेगा। ये सब चीजें हमें थोड़ी तकलीफ तो देती हैं, लेकिन हमें ये कहनी पड़ती हैं क्योंकि हम अपने मार्ग से भ्रमित हो चुके हैं, हम गलत राह पर चल चुके हैं, जिसकी वजह से हम विश्व गुरु की उपाधि भी खो चुके हैं, जिसकी वजह से हम अपने भारत की महानता भी खो चुके हैं। लेकिन फिर वो वक्त आ रहा है, अगर हम योग के द्वारा, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा इन सब चीजों को वापस ला सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जो कि आपने स्वागत गान में भी गाया कि भारत प्यारा, हमारा प्यारा भारत फिर से प्यारा बनेगा, फिर से महान बनेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस यहाँ पर आने के लिए, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ही धैर्यता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले तो मैं अलका जी आपको कहूं कि आपकी आवाज कर्कश नहीं है, बहुत ही मधुर है, राइट? तो एक बार ऐसी मधुर आवाज से आपने जो अपने दिल के उद्गार रखे, सचमुच हम सबके दिलों तक वो बात पहुंची कि सचमुच यदि हम सब मिलकर के इन आध्यात्मिक बातों को, इन मूल्यों की बातों को न केवल सुने और सुनाएं, लेकिन जिए, ये एक बहुत सुंदर सी बात आपने कही। अब जीने की जरूरत है, उन्हें अपना लेने की जरूरत है, उसके स्वरूप बन जाने की जरूरत है। तो सचमुच वो दिन दूर नहीं है जबकि पुनः भारत सोने की चिड़िया होगा, पुनः भारत आध्यात्मिक गुरु होगा, पुनः सारी संसार को भारत से प्रकाश प्राप्त होगा। और इसके लिए ही हम सब जवाबदार जो यहाँ बैठे हुए हैं भाई बहन, उसकी जिम्मेवारी जरूर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये संकल्प हर एक के मन में जरूर होगा कि हम पुनः अपने देश के लिए ऐसा कुछ कर जाएं। और हमारे पास जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है उससे हमें स्पष्ट ही है कि अब हमें किस ओर आगे बढ़ना है। अगले 3-4 दिनों तक हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोग्राम की ब्रीफिंग के लिए हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय संजय भाई को, जो कि स्पार्क के हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं और 1993 से आप हेडक्वार्टर्स में ही समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बड़े ही विनम्र, बड़े ही शालीन हैं, लेकिन आप इनके हार्ड वर्क को यदि देखेंगे तो सचमुच आपको लगेगा कि कैसी नींव के पत्थर की तरह रह करके आप स्पार्क विंग को इतनी महती सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो मैं और ज्यादा वक्त न लेते हुए आमंत्रित करता हूं अपने प्रिय भाई आदरणीय संजय जी को।
ओम शांति। शायद 2-3 लोगों की ही आवाज आई ओम शांति की। हमारे एक वक्ता साहब भराला जी कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद बहुत शांति की अनुभूति होती है, बहुत शांति की अनुभूति हुई। वैसे हम लोग के लिए ये शब्द नया नहीं है, आने वाला करीब करीब हर व्यक्ति यहाँ आके बोलता है कि आने पर बहुत शांति की अनुभूति होती है। यहाँ के वातावरण में ही कुछ ऐसा है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, उसका तन भी शीतल हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों का भी तन मन पूरी तरह से शांत हो गया है, इसलिए रुपेश भाई को कहना पड़ा कि भाई उस सरकार ने अभी तक कोई GST नहीं लगाया है आपकी तालियों पर। और ओम शांति पर भी, ओम शांति बोलने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए एक बार सभी जोर से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति का भी अपना एक गहरा अर्थ है, आपके आगे के सेशंस में ये सुनने को मिलेगा। आप सब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी रिसर्चर्स कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं और ये कॉन्फ्रेंस हर वर्ष रखी जाती है, इस वर्ष भी रखी गई है। आज उसका पहला दिन है, स्वागत सत्र है और ये स्वागत सत्र अपनी समाप्ति की ओर है। आप अगले 3-4 दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं, उन 3-4 दिनों में आपके क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या आपकी दिनचर्या होगी, थोड़ा सा मैं इसको ही ब्रीफ करना चाहूंगा। जैसा कि हमारे श्री भराला जी कह रहे थे कि यहाँ के वातावरण में एक नेचुरल रूप से यहाँ के रहने वालों में डिसिप्लिन है, उनके चेहरों पर रौनक है, मुस्कान है, यहाँ का आतिथ्य बहुत अच्छा है। ये सब चीजें सुनने में बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उसको अपने जीवन में उतारने की बात आती है तो महसूस होता है कि थोड़ा ये कठिन भी जरूर है। कौन नहीं चाहता है कि मैं मधुरभाषी बनूं, मैं विनम्र बनूं, लोग मेरे नजदीक आना चाहें, लोग मुझसे बातें करना चाहें, हर कोई चाहता है, लेकिन इन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करना इतना सहज भी नहीं है। लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से और लाखों लोगों के जीवन के अनुभव से ये मैं कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि राजयोग में इतनी शक्ति है कि इन सभी मूल्यों को हम एक साथ अपने जीवन में उतार सकते हैं। यहां पर जो लोग हैं वो नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं, ज्ञान का श्रवण करते हैं और उसका ही प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। अगले 3-4 दिनों तक आप रहेंगे, आप में से बहुत लोग पहले भी आ चुके होंगे और आप देखेंगे कि बहुत बड़ी व्यवस्था है यहां पर, लेकिन सब कुछ स्वतः चल रहा है। बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं पर कोई आवाज नहीं है, कहीं पर कोई किसी को डांट नहीं रहा है, ये करो ऐसे करो ये कैसे हो गया, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। ये है राजयोग मेडिटेशन का प्रभाव। तो जैसे कि हमारे श्री भूषण दीवान जी कह रहे थे कि हम लोग यहां आए हैं तो आ करके यहां से कुछ लेकर के जाए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। हर वर्ष आपको हम बुलाते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप यहां आए हैं तो यहां से कुछ लेकर के जाएं। मात्र घूमना फिरना ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अलका जी ने भी कहा कि हम पहली बार आए तो हमें ये माउंट आबू बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब आए तो अब जीवन में लक्ष्य क्या है, कुछ सीखना है, आध्यात्मिक बातें सीखनी है। तो जब हमने उसको कंपेयर किया तो लगता है कि उसकी तुलना में वो चीज गौण है, तो हमको यहां से कुछ लेकर के जाना है ताकि आगे का हमारा जीवन हमारे लिए वरदान साबित हो जाए। हम ये अनुभव से कह सकते हैं कि इस योग ने लाखों लोगों के जीवन को सुंदर बनाया है, सुखमय बनाया है, मन को शांत और शीतल बनाया है। आज के समाज में तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है सहज ही छूट जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस राजयोग ने बहुतों का जीवन सुखी बनाया है, आपका भी जीवन सुखी बन सकता है अगर इसके महत्व को हम समझ जाएं। आने वाले 3-4 दिनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे सत्र सुनने को मिलेंगे, बहुत अनुभवी वक्ताओं के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस सुनने को मिलेंगी। अगर उसको बहुत ही सिंसियरली आप सुनते हैं और जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं और इस मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करते हैं, और ज्यादा नहीं, इस मेडिटेशन की एक सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। घर में रहना है, परिवार में रहना है, अपना सारा कारोबार करना है, करते हुए अगर थोड़ा थोड़ा सुबह शाम यदि हम मेडिटेशन कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। और ये मेडिटेशन सबसे पहले हमारी सोच को बदलता है। तो हर वर्ष हम इसी उम्मीद से आप सबको यहां बुलाते हैं कि आप आए हैं तो अपने जीवन को सुंदर सुखमय शांतमय बनाएं, और जब यहां से बाहर जाएं तो आप अपने आसपास के लोगों में भी वही सुख और शांति को बांटें, उनके जीवन को भी सुखमय बनाएं, क्योंकि आज के संसार में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, लोगों के पास खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, धन अपार है, पद है, प्रतिष्ठा है, नौकर चाकर है, साधन सुविधाएं हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है, खुशी नहीं है, संबंधों में प्रेम नहीं है। इसके कारण जो भारत हमारा धर्म गुरु था, जैसे कि अलका जी कह रही थी, उस पद को भी हमने खो दिया है। भारत धर्म गुरु था नहीं, लोग ये कहें कि भारत धर्म गुरु है। तो अगले 3-4 दिनों तक आप सब बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सत्रों को सुनेंगे, अटेंड करेंगे। आपकी दिनचर्या आपकी क्या, यहाँ की जो कॉमन दिनचर्या है हम बता रहे हैं, यहाँ की दिनचर्या 3:30 बजे शुरू हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 3:30 बजे उठना ये तो इट इज जस्ट लाइक फाइटिंग ए वॉर, मतलब नॉर्मली घरों में हम 6 बजे 7 बजे, कुछ लोग तो शायद सूर्यवंशी होते हैं 8 बजे 9 बजे भी उठते हैं, तो यहां पर उठना थोड़ा सा भारी लगेगा। लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप 3-4 दिनों के लिए आए हैं, जब कभी हम ट्रैवलिंग में जाते हैं, अगर हमें सुबह फ्लाइट पकड़नी होती है, ट्रेन पकड़नी होती है, तो हम उठ ही जाते हैं। इस चीज को महत्व दे करके कि हम 2-3 दिनों के लिए आए हैं, तो क्यों ना हम मैक्सिमम बेनिफिट यहां से लेकर के जाएं। तो आप सब सुबह उठने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर अनुभव यदि कभी हो सकता है सारे दिन में तो उस ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको होने वाला है। 3:30 बजे यहां पर उठने का एक गीत बजता है, हम सब उठते हैं, उठ करके हम सबका 4 से 4:45 बजे तक सामूहिक योग चलता है। लेकिन आप चूंकि पहली बार आए हैं तो हम 45 मिनट का न रख के आपके लिए हमने 4:15 बजे से लेकर के 4:45 तक, 4:15 to 4:45 आपका कलेक्टिव मेडिटेशन रखा गया है, और वो सारे कार्यक्रम इसी हॉल में ही होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिन्हें फाइल ना मिली हो, हाथ खड़ा करें। किसी का रजिस्ट्रेशन बाकी रह गया है, आपकी फाइल में प्रोग्राम बुकलेट होगी, उसमें विस्तार से ये सारी दिनचर्या दी गई है, आप उसे ध्यान से पढ़ें। तो 4:15 से लेकर 4:15 to 4:45 एक कलेक्टिव मेडिटेशन होगा यहीं पर। बहुत सुंदर वातावरण वहां उस समय रहता है, प्रकृति का भी सहयोग रहता है, और यहां पर कोई न कोई अनुभवी हमारा कोई एक राजयोगी भाई या बहन होंगे जो आपको बहुत सुंदर संकल्पों के द्वारा योग कराएंगे। उसके बाद 4:45 to 6 o'clock चाय कॉफी यहां पर मिलती है। हमारा किचन है, किचन में आप सब जाएंगे, आप जैसे घर में रहते हैं आप इसे भी अपना घर ही समझें, और कोई तकलीफ हो तो हमें जरूर बताएं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो। आपको सुबह चाय कॉफी दूध की जो भी जरूरत हो वो आपको किचन में मिलेगा। उसके बाद स्नान वगैरह करके चाय वगैरह पी करके 6 से 6:30 बजे तक एक्सरसाइज होगा। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक एक राजयोग के ऊपर प्रवचन होगा, आपका क्लास होगा, वो भी इसी हॉल में होगा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि इस विद्यालय की और इस कैंपस की जो ब्यूटी है वो है मेडिटेशन। वो मेडिटेशन क्या है, कैसे करना चाहिए, इससे हमें जीवन में क्या क्या लाभ मिल सकता है, मिलता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। न सिर्फ जानने को मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ इस मेडिटेशन की आपको अनुभूति भी कराई जाएगी। इसलिए ये जो सुबह के सत्र हैं 4:15 to 4:45 और 6:30 to 8 o'clock, इस सेशन को आप कभी भी मिस ना करें। उसके बाद 8 से 9 बजे तक यहां पर नाश्ता रहता है। नाश्ता करने के बाद फिर 12 बजे से 2 बजे तक लंच रहता है। आप सबसे ये भी अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस बीच में समय के अंदर ही आप अपना भोजन और नाश्ता कर लें, ताकि फिर बाद में समेट दिया जाता है, आपको तकलीफ न हो, इधर उधर ढूंढना न पड़े। तो 8 से 9 नाश्ता और 12 से 2 बजे तक लंच रहता है। फिर लंच के बाद थोड़ा सा ब्रेक दिया गया है, क्योंकि अगर आप 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शरीर तो शरीर है, इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, ये थक जाता है। तो हमारे यहाँ दोपहर में सब लोग थोड़ा विश्राम करते हैं, आपके लिए भी विश्राम की सुविधा है, आप 2 बजे से 3:30 बजे तक विश्राम कर सकते हैं। फिर 3:30 से 4 बजे तक आपके चाय और कॉफी की व्यवस्था होगी डाइनिंग हॉल किचन में ही, डाइनिंग हॉल 6 के बाहर। फिर शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में डिनर रहेगा और 10 बजे कार्यक्रम यहां पर समाप्त हो जाता है। यहां पर सारे कार्यक्रम करीब 10 बजे पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से इन शॉर्ट ये दिनचर्या थी, विस्तार में आपके बुकलेट में है। उसके बाद जहां तक साइट सीन की बात है, आप सब यहां आए हैं तो आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, आपने माउंट आबू का नाम बहुत सुना होगा टेलीविजन पर,
तो जरूर ये इच्छा तो होगी कि हम माउंट आबू आए हैं तो हम यहां पर थोड़ा सा आबू दर्शन करें। तो आबू दर्शन के लिए भी समय मुकर्रर किया गया है 16th को दोपहर के बाद। साइट सीन की व्यवस्था की गई है, आप लोग साइट सीन ऑफिस में पहले से ही टैक्सी बुक करवा देंगे और 16th को ही बुक करवाएं। उससे पहले जो भी ये हमारे सत्र चलेंगे कृपया इस बीच में कोई भी घूमने के लिए ना जाए, क्योंकि आप अगर एक दो सेशन भी मिस करते हैं तो हो सकता है बहुत कुछ मिस कर दे, उसमें आपके जीवन के लिए कौन सी बात मिल जाए हम ये जानते नहीं हैं। तो सभी सेशंस अटेंड करें, साइट सीन लास्ट दिन रखा गया है। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि यहां का जो कैंपस है यहां पर शांति बहुत है, यहां पर प्रायः 700 800 1000 तक लोग भी रहते हैं, 300 400 लोग तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई आपको ऊंची आवाज में बात करता हुआ नहीं मिलेगा। ये आपने गौर किया, सब धीमी आवाज में बात करते हैं। अध्यात्म में वो शक्ति है कि वो आदमी के मन की जब अशांति दूर होती है तो हमारे मुख की अशांति भी दूर हो जाती है, लेकिन चूंकि आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हो सकता है, हम देखते हैं बहुत सारे मेहमान यहां आते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो यहां के वातावरण पर उसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है, यहां के जो मेडिटेटर्स हैं उन पर उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो आप सबसे ये विनम्र निवेदन होगा कि आप सब जब भी बात करें या फोन पर बात करें या आपस में बात करें धीमी आवाज में बात करें, और खास करके सुबह 6:30 बजे तक अगर बात न करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आध्यात्मिक जीवन में ये भी एक चीज, मौन का भी बहुत अधिक महत्व है। अगर इन 4 दिनों में आप कम से कम बोलते हैं तो आध्यात्मिक बातों का आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। तो ध्यान रहे कि अगर आप कम से कम बोले, साइलेंस का पालन करें तो अच्छा होगा। साथ ही साथ ये एक पवित्र स्थान है, भगवान की धरती है ये, तो यहां पर किसी भी तरह का मद्यपान या नशा करना ये मना है। कृपया आप सबसे अनुरोध है, हम ये कहते हैं कि विद इन कैंपस नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग नथिंग, तो देखा कई लोग गेट के बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब हम प्रवास में कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हम इस तरह की सब चीजों को त्याग देते हैं। ये भी आप सबके लिए एक तीर्थ यात्रा ही है, यहां पर आप अपने जीवन अपने कई जन्मों को संवारने के लिए आए हैं, इसे तीर्थ यात्रा समझते हुए इन सब चीजों को पूरी तरह से अवॉइड करें। एक चीज और, यहां की अपने ड्रेस की भी मर्यादा है, घर में तो हम जैसे भी रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये एक आश्रम है तो यहां पर जब भी हम अपने कमरे से बाहर निकलें कृपया पूरी तरह से मर्यादित वस्त्र को पहन के निकले, पूरा अच्छी तरह से हम ड्रेस्ड हों। कई बार ये देखने में आता है फिर बोलना अच्छा नहीं लगता है, बहने हो या भाई हो नाइट ड्रेस में ही चाय पीने आ जाते हैं, नाइट ड्रेस में ही वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस स्थान की अपनी एक गरिमा है, जब भी आप अपने रूम से बाहर निकले पूरी तरह से मर्यादित वस्त्र में ही निकले। आपके फाइल में एक आईडी कार्ड दिया गया होगा, एक बैज दिया गया होगा, उस बैज को आप सारा दिन जब तक है उसे जरूर लगा करके रखें। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने उस बैज को अभी भी लगाया नहीं है। इस कैंपस को देखने के लिए सैकड़ों लोग रोज बाहर से आते हैं, ऐसे में ये पहचान पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है कि हमारे अंदर रहने वाले हमारे मेहमान कौन हैं और बाहर के आने वाले मेहमान कौन हैं। वो डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में चले जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको अलग अलग कर पाना कठिन होता है। और आपको यहां के जो निवासी भाई बहने हैं जो सिक्योरिटी पर हैं या और भी, वो बार बार पूछते रहेंगे, वो आपको बाहर का मेहमान वन डे विजिटर सोच करके पूछते रहेंगे, फिर कई जगह जाने से आपको मना भी करेंगे। तो अनुरोध है कि आप सब अपना जो बैज है उसको हमेशा पहन करके ही रखें। एक विशेष बात जो आप सबको ध्यान में रखनी है, ये जो हमारा कैंपस है वो जंगल के बीच में बना हुआ है, चारों तरफ जंगल है, बस्ती यहां से दूर है, यहां पर हिंसक जानवरों का काफी खतरा रहता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि रात्रि के समय अंधेरा होने के बाद कोई भी गेट से बाहर न जाए। अगर गेट से बाहर जाते भी हैं तो 2-4 लोग साथ में रहें और 100 मीटर से दूर न जाएं, क्योंकि यहां पर हिंसक जानवरों का अक्सर एक्सीडेंट्स ये होते ही रहते हैं, तो आप सब प्लीज बाहर न जाए रात्रि के समय में। आप सबको किसी भी तरह की अगर मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो तो हमारे घर के भीतर ही इस कैंपस में ही हमारी डिस्पेंसरी है, बाबा डिस्पेंसरी के नाम से, जो विष्णुपुरी बिल्डिंग से सटे हुए है, जहां पर निःशुल्क रूप से हमारी चिकित्सा मिलती है। निःशुल्क, आप बिल्कुल संकोच की बात नहीं, कभी भी आपको किसी भी तरह की तबीयत में खराबी लगे आप वहां जाकर के वहां से मेडिसिन ले सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो आपको बहुत प्यार से आपकी सेवा करेंगे। बहुत सारे भाई बहने यहां आते हैं, उसके बाद वो लोग इस ज्ञान को और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि इससे रिलेटेड और साहित्य हमें कहां मिलेंगे, लिटरेचर हमें लेना है। तो हमारा एक लिटरेचर काउंटर है, ये जो हार्मनी हॉल बैठे हैं उससे एक फ्लोर नीचे जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर हमारा लिटरेचर काउंटर है। बहुत सारी राजयोग रिलेटेड बुक्स हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी है, तो आप चाहें तो वहां से वो बुक्स परचेज कर सकते हैं। आप में से यदि किसी को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध की जरूरत हो, कोई अगर ब्राउजिंग करना चाहते हो, तो इसी बिल्डिंग के नीचे जब आप सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो हमारा इंटरनेट ऑफिस है, वहां से आप निःशुल्क रूप से आप इंटरनेट की सेवाएं ले सकते हैं। और लास्ट में अगर इसके अलावा कोई भी मन में क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप या तो इस पार्क ऑफिस में या कॉन्फ्रेंस ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई सहायता हो, कोई असुविधा हो, तो आप निसंकोच रूप से हमारे भाई बहनों से मिलें, उन्हें बताएं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छी सुविधा दें और अच्छी तरह से आप बाबा के घर में, भगवान के घर में आए हैं तो रहें। तो इस तरह से ये थोड़ा सा दिशा निर्देश था, इसका जरूर पालन करेंगे। आपकी दिनचर्या भी आपने सुन ली है, तो अगले चार दिनों तक आप इसको बहुत तत्परतापूर्वक पालन करेंगे ताकि इसका आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। ओम शांति।
शुक्रिया संजय भाई, हमें क्या करना है आपने सुंदर दिशा निर्देश हम सबको दिया है। मेरा अनुरोध है जो परिसर में हैं मेहमान वो सभी हॉल में आ जाएं, क्योंकि इस सत्र के बाद गॉडली गिफ्ट का वितरण किया जाएगा। ईश्वरीय परिवार जहां आप आए हैं वहां का एक सुंदर नियम है कि आपको यहां से गिफ्ट प्रदान किया जाता है, क्योंकि परिवार में जैसे हम अपने बड़ों के यहां जाते हैं, दादाजी नाना जी के यहां, तो वहां से कुछ ना कुछ सौगात लेके आते हैं, तो परमात्मा के घर में आए हैं तो यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो यहां जो बैठे हैं वो तो बैठे ही रहेंगे, लेकिन परिसर में जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे होंगे भाई बहने जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो कृपया हॉल में आ जाएंगे, उन्हें भी गॉडली गिफ्ट प्रदान किया जाएगा। और मैं अनुरोध करूंगा अब आदरणीय दीदी से कि हमारे मंच पर उपस्थित जो मेहमान हैं उन्हें शॉल से स्मृति चिन्ह प्रदान करके और ईश्वरीय प्रसाद भेंट करके सम्मानित करेंगे। आदरणीय दीदी, हमारे बीच भूषण दीवान जी उपस्थित हैं, हमारे बीच श्री राजकुमार ठुकराल जी उपस्थित हैं, डॉक्टर शिवकुमार जी हैं, डॉक्टर अलका जी हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारी बहनों से कि वो शॉल साथ ही साथ स्मृति चिन्ह और प्रसाद प्रदान करेंगे हमारे सभी मेहमानों को, और हम तालियों से हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें क्या करना है अगले तीन चार दिनों में उसकी सुंदर जानकारी और अपने सुंदर विचार हम सबके सम्मुख रखे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो, इससे आपका उमंग और उत्साह दिखाई देता है, और मैंने पहले भी आपको बताया इससे क्या फायदे होने वाले हैं। कहते हैं इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं, लेकिन खुशियां बांटने वाले चंद हैं, इसलिए खुलकर तालियां बजाएं, क्योंकि तालियां तो वैसे भी फायदेमंद हैं। प्रोग्राम की अंतिम कड़ी में
मैं आमंत्रित करूंगा पुनः आदरणीय अलका दीदी को कि हमें राजयोग की गहन अनुभूति की ओर ले चलें। शुरुआत भी हमने ईश्वर की स्मृति से की थी और अंत भी हम ईश्वर की स्मृति के साथ करेंगे, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जिन्होंने हमें इतना सुंदर अवसर प्रदान किया इस सुंदर परिसर में आने का और साथ ही अपने सामिप्य का अनुभव करने का। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अलका दीदी से कि वो आएंगी और हम सबको गहन राजयोग अनुभूति की ओर ले चलेंगे। और हमारी मंचस्थ महानुभावों से भी अनुरोध रहेगा कि वो भी अपना आसन ग्रहण करेंगे। अब हम योग की गहन अनुभूति के साथ इस सत्र को संपन्न करेंगे और सभी यहाँ बैठे रहेंगे, फिर गॉडली गिफ्ट का वितरण इस योग के पश्चात होगा।
ओम शांति। अभी हम कुछ समय के लिए अपने आप से कुछ स्वचिंतन करेंगे। आप सब जिस स्थान पर पहुंचे हुए हैं, ये स्थान उस परमपिता परमात्मा का हम सब आत्मा रूपी बच्चों के लिए प्यारा सा घर है। उस परम शिक्षक परमात्मा के द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षाएं मिलती है, वो एक आध्यात्मिक ज्ञानदान और योग के द्वारा शक्तियां प्रदान करने वाला ये विद्यालय है। परम सदगुरु परमात्मा शिव का ये प्यारा सा दरबार है जिसमें आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो मैं प्रथम आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप इस परमपिता परमात्मा परम शिक्षक परम सद्गुरु के पास बैठे हो। पहले पलों में आप अपने आप को पहले रिलैक्स कर लीजिए। आपके पास दिल में जो भी चिंताएं हैं, फिक्राते हैं, कुछ गम है, कुछ दुख है, आज हम प्रभु के सामने अर्पण करके हम उसके प्यारे से बच्चे हैं, हम उससे कुछ प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमें बहुत कुछ वो देने वाले हैं और मुझे वो सारा खजाना अपनी आत्मा में भर करके ले जाना है। तो हम अपने आप से कुछ स्वचिंतन करेंगे आज। स्वयं को एक सुंदर चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप में अनुभव करें। मैं वो परम भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जो इस विश्व मंच पर, जिस धरा पर परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ है, दिव्य ज्ञान की रोशनी मिल रही है, दिव्य गुणों का वरदान मिल रहा है, दिव्य शक्तियों से आत्मा को श्रृंगारा जा रहा है। उस परमात्म अवतरण की श्रेष्ठ भूमि विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए यह उस पिता परमात्मा के कर्तव्य भूमि जहां पर स्वयं परमात्मा ने मुझ आत्मा को स्नेह भरा निमंत्रण देकर बुलाया। उस परमपिता परमात्मा के हम अधिकारी, परमात्मा के वारिस, अति प्रिय संतान है। मुझ आत्मा को अपना अधिकार समुच आत्मा की शांति, आनंद, प्रेम आत्मज्ञान परमात्म मिलन की दिव्य अनुभूतियां इस अधिकार को लेने वाली मैं आत्मा परमात्मा की बालक सुमालिक हो। एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मैं समस्या मुक्त हूं। सफलता मूर्त हूं। मैं उस परमपिता परमात्मा की सत्यम शिवम सुंदरम की सुंदर रचना हो। उस कल्याणकारी पिता मुझ आत्मा को अपनी स्नेह भरी दृष्टि से निहारते उनकी वरदानी दृष्टि मुझ आत्मा में शक्ति भरती है। मैं आत्मा उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान संपूर्णतः सभी शक्तियों से भरपूर अनुभव करे। एक शांत शक्तिशाली पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूं। शांति शांति। शांति।
राजयोग की गहन अनुभूति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अलका दीदी। हम अपने मंचस्थ सभी महानुभावों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं करतल ध्वनि से कि उन्होंने हमें सुंदर प्रेरणा प्रदान की है, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।